हम अपने सिर को झुकाएं।
डियर गॉड,
प्रिय परमेश्वर, हम इस दोपहर बाद प्रसन्न हैं कि ये सौभाग्य मिला है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक बार फिर से जमा हुए हैं। और प्रभु, केवल आप ही जानते हैं कि हमारे हृदय कैसे इस समय के लिए लयलीत रहते हैं, जबकि हम आपके लोगों के समक्ष फिर से खड़े हो सकते हैं और इस संदेश को लाते हैं कि हम जीवन के संबंध में ये अनुभव करते हैं कि इस घड़ी के लिए ये परम आवश्यक है। तूने हमें ये कुछ दिन हमारे हिस्से में अब दिए हैं और प्रार्थना हम करते हैं प्रिय परमेश्वर कि आपके अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर, हमारे मार्गदर्शन और हमारे निर्देशन के लिए होगा और हमें वे चीजें दें जिनकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय आपको और अच्छी तरह से जानने के लिए ललित हैं। हम कटाई के लिए पके हुए सफेद खेत देखते हैं और जानते हैं कि वो महान दाना अलग करने के समय के लिए अब दाना तैयार है। प्रिय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चारों ओर से छिलके को उतार देंगे इन आने वाले कुछ दिनों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए पकने वास्ते हमें अपने पुत्र की उपस्थिति में रहने दे। हर गाना जो गाया जाएगा उसे आशीषित करें। प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक जिसके लिए प्रार्थना की जाएगी उसे उत्तर दे प्रभु। सब खोए हुओं को बचा, वे जो भटक गए हैं उन्हें जीवित परमेश्वर के घर में और संगति में वापस बुला। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर बीमार को जो हमारी छत के नीचे आया है उसे चंगा करें। प्रभु, इसे ग्रहण करें। होने दे कि सभाओं के अंत में हमारे बीच कोई भी दुर्बल व्यक्ति ना हो। और प्रिय परमेश्वर, तब हम अपने लिए, हम जो इस घड़ी में कलीसिया होने का दावा करते हैं, बाहर बुलाए हुए वे जो समस्त संसार में बाबुल से बाहर निकल कर आए हैं और इस अंतिम दिन शानदार संगति के भागी होते हैं, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को इस तरह से आशीषित करेंगे। सच में प्रभु, हम भूखे हैं और हमने जितना हम जानते हैं अपने को संसार की चीजों से खाली कर लिया है। प्रभु, हम हर बोझ को एक और डाल देते हैं जिससे हम सरलता पूर्वक व्याकुल थे, और हमें इस दौड़ में धैर्य से दौड़ने दें जो हमारे सामने है। पिता, इसे प्रदान करें और होने दे इस सभा के अंत में हम भरे हुए मजबूत अच्छे मसीह हों तब से जब हम अंदर आए थे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि हम ये सब यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं सोचता हूँ आज रात्रि के लिए ये अच्छा सौभाग्य है कि मैंने कुछ देर की प्रतीक्षा की। उस दिन मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, मैंने कहा आराधनालय पहुँचने की प्रतीक्षा में मैं अधीर हो जाता हूँ। मैं, मेरे पास दूसरे और मित्र हैं, ये सही है, सारे संसार में मेरे मित्र हैं, परंतु यहाँ इस आराधनालय में कुछ और ही बात है। मैं यहीं की ही मिट्टी से निकला था जब परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर जीवन दिया, और मैं समझता हूँ यदि वो देर करता है तो मैं यहीं कहीं गाड़ा जाऊंगा। जब वो आता है तो वो मुझे यहीं कहीं पाएगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कुछ और है। जब मैं जेफरसन विले के विषय में सोचता हूँ, उस दिन मैं इतना अकेला पड़ गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा मैं घर छोड़ने से दुखी हूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं घर छोड़ने से किसी लिए दुखी हूँ जब तक वे लोग मेरे लिए प्रार्थना न करें। मैंने कहा, अच्छा, मैं केवल एक बात जो मैं करने के लिए जानता हूँ कि वापस जाकर और कुछ दिनों की सभा करूँ। देखिए, यदि हम प्रभु की ओर से कुछ नहीं पा सकते तो हो सकता है वो चाहता है कि हम कुछ जाने, और वो महान जीवन संबंधी विषय विवाह और तलाक जो अब हमारे सामने है, और यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका उत्तर ना हो। इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, उसका उत्तर है। और यदि प्रभु ने चाहा तो मैं उस पर रविवार की प्रातः बोलने का यत्न करना चाहता हूँ, और तब कल आने वाली रात में मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ वो विद्यालय क्या कहलाता है, पार्क व्यू सभागार, क्या श्रीमान, पार्क व्यू जूनियर हाई, कितने जानते हैं कि वो कहाँ स्थित है? ठीक है, मैं समझता हूँ कि वे वहाँ दिशा निर्देश लगा देंगे। भाई नेविल लगा देंगे ना? जी हाँ, वो यहाँ से ऊपर लगभग 3/4 मील होगा और वहाँ दिशा निर्देश चिन्ह होगा। सड़क छोड़कर वापस मुड़ना है। वो अच्छी ऊंची इमारत है, उसमें आपके हाथ रखने के लिए स्थान है और जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं और दूसरी दूसरी चीजें। और मैं आश्वस्त हूँ कि आप वहाँ अधिक आनंद पाएंगे यहाँ की अपेक्षा, यहाँ के आप यहाँ सभा में अकड़ से जाते हैं। इस आराधनालय में वहाँ पर बहुत स्थान होगा, गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत स्थान है। मैं सोचता हूँ कि उनके कुछ नियम हैं जिनको मानने के लिए हम वचनबद्ध हैं। वो ये था कि लगभग 6:30 बजे तक मैदान में न जाएं। और किस समय दरवाजा 6:30 बजे खुलता है? मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए ये एक अच्छा विचार है कि वहाँ 6:30 बजे पहुँचे। अब उनके पास यहाँ नगर में एक और सभागार है जिसमें 6,000 कुर्सियों का स्थान है। यदि हम यहाँ सही प्रकार से रहेंगे तो हो सकता है किसी समय इन गर्मियों में किसी बड़ी सभा के लिए वे हमें दूसरा वाला दे देंगे जब मैं विदेश से वापस आऊँगा। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ तक बैठ सकते हैं। हम कितने लोग वहाँ बैठ सकते हैं? 4,000। इसलिए आप देखिए कि हमारे पास बहुत स्थान है, वहाँ अधिक भीड़ नहीं होगी। और इसलिए 6:30 बजे आइए, और तब इसलिए हर कोई सही समय पर आ सकता है, तब एक साथ। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आपको बैठने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा, और वो इस तरह का बना हुआ है कि टिप्पणियाँ लिखने इत्यादि के लिए स्थान है, और वो आरंभ होगा यदि प्रभु ने चाहा। अब मैं सोचता हूँ आज रात्रि बुधवार की प्रार्थना सभा होने के कारण से हमारा स्थान भरने के लगभग है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा है कि हम कल रात्रि से आरंभ करें। हमने इसको इस आशा से किराए पर लिया था कि हो सकता है यदि यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होगी तो हम वहाँ जा सकते हैं, परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पर जाएं। भाई नेविल, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि कल रात्रि वहाँ जाएं? और कितने ऐसा सोचते हैं कि ये एक अच्छा विचार है, और तब आपको वहाँ बहुत स्थान मिल सकता है? वो पहले ही किराए पे ले लिया गया है, उसका किराया इस कलीसिया के कुछ भाइयों ने दे दिया है। वो हमें $50 प्रति रात्रि के हिसाब से पड़ा है, जो कि बहुत ही कामना करता हूँ कि वहाँ एक रात्रि $50 में हमें काफी कुर्सियाँ चारों ओर बैठने को मिल सकेंगी। बिल्कुल नई इमारत, बढ़िया मंच। और परंतु हम लोग, मैं समझता हूँ कि हम चंदा लेंगे, और हम नहीं चाहते कि वे स्वयं इसका भुगतान करें। हम उसका खर्चा देंगे, उन्हें पैसा वापस लौटा देंगे, परंतु जब हमारे खर्चे और चीजें पूरी हो जाती हैं, तब हम कहीं में भेंट लेना बंद कर सकते हैं। हम करते नहीं। अब यदि हमारे साथ कोई अपरिचित है, हमने ये पद्धति अपना रखी है, कभी मांगेंगे नहीं, ना ही पैसों के लिए लोगों पर दबाव डालेंगे। हम लोग सामने से चंदे की थैली निकाल लेंगे, जो कि मात्र एक धार्मिक कार्य है। मैंने बहुत बार प्रयत्न किया कि चंदे की थैली भी लोगों के सामने बिल्कुल ना लाऊं, परंतु ऐसा चल नहीं पाता, समझे? क्योंकि देना हमारे धर्म का एक भाग है, ये हमारे कर्तव्य का एक भाग है। कोई बात नहीं यदि वो कम हो या वो जो भी हो या एक पैसा हो, वही सब है। इसलिए आपको याद होगा, एक दिन यीशु ने विधवा को वहाँ से निकलते देखा जहाँ पर धनी लोग अपने धन भंडार में से उस भंडार में डाल रहे थे, और ये विधवा वहाँ से निकली। हो सकता है उसके साथ उसके दो भूखे बच्चे संग में हों, और जो उसके पास था उसने सब दे दिया, 3 दमड़ियाँ। और यीशु ने कहा, किसने अधिक दिया? और यदि मैं वहाँ खड़ा हुआ होता तो मैं कहता, बहन ये मत करो, हम देखते हैं हमारे पास काफी पैसा है। परंतु उसने उसे कभी नहीं रोका। देखा, उसे मालूम था कि उसके पास कोई महान चीज आगे के लिए भविष्य में थी। इसलिए देखिए, इस सब के पश्चात उसके पास महिमा में एक घर था जिसमें वो जा रही थी, और उसने उसे कभी नहीं रोका। उसने उसे 3 दमड़ियां डालने दी क्योंकि यही था जो उसे करना चाह रही थी, बालकों के साथ एक विधवा और केवल 3 दमड़ियां जीवित रहने के लिए, और वो ये करना चाहती थी। उसे यही चाहना था करने के लिए। इसलिए आप देखिए, जब लोग देना चाहते हैं, आपको उन्हें देने देना चाहिए, ऐसा करने के लिए सुअवसर। परंतु मैं इन प्रतिष्ठाओं के लिए सोचता हूँ, और लोग कहते हैं, कौन $50 देगा, कौन $20 देगा? मैं सोचता हूँ ये आपकी ठानी हुई बुद्धिमानी है। मैं सोचता हूँ कि लोग अनुभव करते हैं कि सभा चलाने के लिए पैसे चाहिए, और उन प्रबंधकर्ताओं को मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, जब कभी आपको ऐसा करना पड़े, तब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं वापस आराधनालय को चलूं। इसलिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा। परंतु मैं सोचता हूं कि हमें धार्मिक सभा की व्यवस्था को पूरा बनाए रखने के लिए चंदे की थैली को आगे से निकालना ही है, और इसलिए संभवतः है वे लोग प्रत्येक रात्रि छोटी चंदे की थैली को आगे से निकालेंगे। कुछ इस तरह से कहिए कि अब हम लोग चंदा लेते हैं, और वे चंदे की थैली घुमाएंगे, और वही अंतिम होगा। और यदि प्रभु चाहेगा तो प्रत्येक रात्रि, मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने मेरे हृदय में कलीसिया के लिए विशेष संदेश रखा है। मैं कई दिनों से प्रार्थना में हूँ, और मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस दिन एक महान घटना घटी जो कि सच में महान है, और मैं उसे आपको बताने के लिए व्याकुल हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि वो खास विषय जिसके लिए अधिकतर सब लोग बिली ने बताया विवाह और तलाक के लिए कह रहे थे, जो कि एक महान विषय है, और मैं नहीं जानता कि उसे कैसे आरंभ करूं। और इस विषय में मैं प्रार्थना करने के लिए गया, और प्रभु मुझसे मिला, और मैं जानता हूँ कि मैं मेरे पास ये नहीं था, परमेश्वर मुझे दे चुका है और अब मेरे पास है। परमेश्वर ने मुझे ठीक उत्तर दिया है। देखिए देखिए, और मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, और इसलिए मैं अभी तक ठीक से नहीं जानता। हो सकता है कि रविवार को मैं बहनों से कहूँ कि वे अपने आप इस सभा में ना आए, परंतु मैं नहीं जानता। ये निर्भर करता है, यदि विवाहित स्त्रियां अपने पतियों के साथ आना चाहें, इसमें कुछ जीवन संबंधी वास्तविक बातें बताने के लिए हैं सत्य के विषय में और कैसे। और इसलिए हम इस यहोवा यूं कहता है को बिल्कुल वैसे ही रखना चाहते हैं, तब आपको ये मिला, तब आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है, और इसे करने के लिए मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ। और अब मैं एक दिन यहाँ रेस्टोरेंट में खा रहा था, और जेरी और वे सब आपको ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा भाई, हम कोई लड़कों में से एक ऊपर था, बोला। इसने कहा, मैं इस सप्ताह बहुत अच्छी तरह से आने वाला हूँ, बोला। उन्हें मिला या इन अगले दो सप्ताहों में? उनकी बास्केटबॉल की एक सभा है या कुछ और चीज? तब बोला, ब्रनम वहाँ पर सभा करने जा रहे हैं। वो बोला, मैं सब लोगों को खाना खिलाऊंगा। वहाँ पशुओं की चरागाह की ओर एक स्थान है, पशुशाले वाले मकान में, और वे बहुत ही अच्छे लोग थे, और मैं आप सबकी सराहना करता हूँ, क्योंकि निश्चय ही उन्होंने आपकी बढ़ाई करी और आप लोगों के विषय में अच्छी बातें कहते हैं। उस प्रातः प्रबंध मुझे चरागाह वाले मकान में मुझसे मिला। मैं एरिजोना से लगभग 2:30 पर वहाँ पहुँचा, और उसने कहा, भाई ब्रनम आप ठीक हैं? बोला, मैं सुनता हूँ कि आप दूसरी सभा करने जा रहे हैं। वो बोला, मुझे कुछ अतिरिक्त सहायता मिल गई है, और बोला, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि वे लोग जो वहाँ से आए थे, बोला, वे सच में ही बहुत अच्छे लोग हैं। अब मुझे आपके विषय में सही में बहुत अच्छा लगा, देखा। क्योंकि कुछ भी हो, मैं इस तरह अनुभव करता हूँ कि तुम लोग मेरे छोटे बच्चे हो, और मैं यानी बच्चे हो, और इसलिए मैं किड बकरी के संदर्भ में है, और आप लोग बकरी नहीं है, आप लोग मेरे मेमने हो। ये कैसा है? आप लोग प्रभु के मेमने हो जो मुझसे खाना खिलवाता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझसे ये करने देगा। हम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन 7 मोहरों के समय से मैं चाहता रहा हूँ कि इस विवाह और तलाक के विषय पर बोलूँ। आप जानते हैं, भेद सारे भेद उनके अंदर खुल जाने हैं। बाइबल के सारे उन 7 मोहरों में खुल रहे हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि कम से कम मैं इसे टेप पर अंकित कर दूं, चाहे मुझे कुछ भी हो, तब कलीसिया चकित हो सकती है, संदेह कर सकती है कि उसके मस्तिष्क में क्या था, वो क्या कहता है, और वो सारे विषय जो कि बहुत कठिन लगते हैं, प्रभु की सहायता से मैं सोचता हूँ मैं आपको उन्हें बताने जा रहा हूँ। और तब यदि कुछ घटित होता है, और यदि ऐसा हो कि उसके आने से पहले मैं जाता हूँ, तब आपके पास ये अंकित होगा। मैं सोचता हूँ हमने कुछ नई पुस्तकें निकाली हैं। मैं बहन वायल को देखता हूँ, मैं नहीं जानता कि डॉक्टर यहाँ है या नहीं। बहन वायल, वो यहाँ है क्या? हो सकता है वो सभा में है, मैं उन्हें नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ओह हाँ, वो वहाँ पीछे हैं। और भाई वायल ने एक पुस्तक लिखी है, और वो, मैंने सोचा, मेरा विश्वास है, आज उन्होंने कहा दो। भाई वायल, क्या ये ठीक है? यहाँ अब आपके पास दो हैं, दो पुस्तकें? अब मैं नहीं जानता, मैं जिस तरह से समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मिलेगी, इसलिए मैं इसी तरह से समझता हूँ, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। और तब 7 कलीसियाई काल पूरी हो गई है। भाई वायल, क्या ये ठीक बात है? और अब ये छपाई में है, और मैं जानता हूँ आप उसे लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो आपके हृदय में हैं, उनके उत्तर वहाँ पर हैं। और तब उसके पश्चात हम प्रयत्न कर रहे हैं कि 7 मोहरों को खोलें पुस्तक में, आप जानते हैं, इसलिए कि हर कोई उसको इस रूप में पढ़ सकेगा। वे चाहते हैं कि समझ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। मैं सोचता हूँ, जब ये लिखी गई, पहले हमने इसे टेप पर से उतारा, जिस प्रकार से ये लिखी गई या बोला गया, आप जानते हैं, आप उपदेश दे सकते हैं, ये एक बात है, और तब पुस्तक लिखना ये दूसरी बात है। देखिए, जैसा कि मैं एक विषय को लेने पर हूँ, जैसा कि मैं आपसे कहूँगा, मैं आपसे कहता हूँ, अब सर्प का वंश, समझे? अब पुस्तक को पढ़ने वाला, यदि आपने उसे लिया तो आप सोचेंगे सर्प वंश क्या होता है, देखा, और वे नहीं जान पाएंगे। यदि ऐसा हो जाए कि वो प्रिंसटन जैसे स्थान में पहुंच जाए या कहीं और वे सोचने लगेंगे कि हम लोग तो बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए मैंने भाई वाइल को लिया कि इस तरह से मेरी सहायता करें और विचारधारा को एक क्रम में रखें और व्याकरण में दें। और मुझे निश्चय है कि मेरी व्याकरण उनके लिए एक भेद होगी, काफी हद तक ठीक है, इसलिए भाई वाइल इसमें बहुत सही है, इसलिए वो एक तरह से। और तब इसमें मैं सोचता हूँ हमारे मूल्यवान भाई किसी तरह से कुछ अधिक प्रेरित हुए, और वो बोले कि वे अपनी कुछ और एक पुस्तक लिखने जा रहे थे उनसे हटकर, जैसे और इसलिए उन्होंने, मैं विश्वास करता हूँ, एक लिखी जो 20वीं सदी का भविष्यद्वक्ता कहलाती है और दूसरी मैं सोचता हूँ लुदिकिया कलीसिया या कुछ और इसी तरह से। और आज रात्रि बिली ने मुझे ये बताया कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज कई हजार पहुँच चुकी हैं, कोई टेक्सास से उन्हें लेकर आया है और इसलिए वे यहाँ होंगी और वे इसकी घोषणा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि वे जो कुछ भी होंगी, मैं सोचता हूँ कि उनकी किसी ने जिम्मेदारी ली है, मैं पक्का नहीं हूँ, और यदि वे हैं तो वो आपको दे दी जाएंगी मुफ्त भी, आप समझे। और हम आशा करते हैं आप इससे आनंदित हैं, और यदि आप हैं तो पीछे भाई वाइल से हाथ मिलाइए और उन्हें बताइए कि आप उसकी कितनी सराहना करते हैं। मैंने इसे स्वयं नहीं पढ़ा, यदि मैं उन्हें पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं इस विषय में अपनी विचारधारा बदल सकता हूँ, इसलिए मैं इस सप्ताह में उन्हें पढ़ने का यत्न करूंगा यदि हो सका, मुझे अवसर मिला तो। अब बुधवार की रात होने के नाते सदिकार हमारी सभाएं कल आरंभ होती हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि जब मैं आपके बीच में हूं, मैं ऐसे ही घर पे नहीं टिक सकता, और जानते हुए कि आप सब यहां पर हैं, आप जानते हैं कि मैं पसंद करता हूं, जैसे कि आप लोगों के रिश्तेदार यहां हैं, आप जानते हैं, और आप लोग गली के छोर तक उनसे मिलने के लिए दौड़े जाते हैं, आप जानते हैं, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाकर और आपका जेफरसन विले में आपका स्वागत करूं, और इसलिए पिछले सप्ताह में लगभग, नहीं मुझे क्षमा करें, ये लगभग 3 सप्ताह पहले मैं घर आया, मैं बाहर था कि यत्न करूं, एरिजोना में होते हुए कुछ सभाओं में था और मैं वापस आ गया कि विश्राम के लिए यत्न करूं, और मैं शिकार पर चला गया और मैंने एरिजोना प्रदेश का बड़ा सिंह मार लिया, मैंने उसे मारने के लिए 20 मील पेड़ों के जंगल में दौड़ाया, परंतु तब ये सोचकर, यद्यपि मैंने कभी ये नहीं सोचा जब मैं छोटा लड़का था, ये दिखाऊं कि कैसे ये बातें घटित होती हैं। महीनों के लिए जब हम वहाँ थे, प्रभु ने हमें वहाँ छोटा सा स्थान दिया और बालकों के लिए विद्यालय, मैं छोटा लड़का था, मुझे लगता है आज रात्रि जिमी पूल यहाँ है, हो सकता है बड़े जिम उनके पिता यहाँ हैं। हम विद्यालय एक साथ गए और मुझे याद है जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चे चिथड़े पहने वहाँ बैठते थे और जूते, टेनिस के जूते जिनमें से पंजे बाहर निकले रहते थे, एक से कागज मांगते थे और दूसरे से पेंसिल। मैं कविता लिखता था और श्रीमती वुड जो यहाँ मुझसे दोपहर बाद पेपर मेरी पुरानी फोर्ड रटवाया करती थी, आप जानते हैं, और ये अच्छी वाली थी, अब उन्होंने कहा भाई तुम्हें इसे श्री फोर्ड को भेजना चाहिए। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें बहुत सत्य है, सामने से खड़खड़ाने के विषय में और गियर में चक्की है और चालक पहिए वाले गियर में चीन की पहेली, परंतु मैंने हमेशा एक बात कही जो मुझे करनी थी कि चारों पहिए गिनो और इतना धक्का दो कि चालू हो जाए और तब उसमें घुस जाओ। मैंने कहा यह बहुत अच्छा था जब मैं पहाड़ी चढ़ाई पर उसे चालू करता, उसे बस बहुत धीरे धीरे खींचता, ये कहते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तब दूसरी ओर से ये कहते हुए शुरू करता, मैंने सोचा मैं कर सका, मैंने सोचा मैं कर सका, देखा। इस प्रकार से हम एक तीर्थ की उन्नति की तरह इस पहाड़ को खींचते हैं, इसलिए हम, मेरे पास एक छोटी कविता जो मैंने लिखी कुछ इस प्रकार से है, और कहा अब जरा सोचिए, मैं लगभग 12 वर्ष का था उस दिन, वहाँ पर खड़ा हुआ उस पर्वत श्रेणी को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये सिंह या गुफा वाले कमरे में स्थापित है और खिड़की से बाहर देख रहा है, कांच की खिड़की में। मैं एक छोटी कविता के विषय में सोच रहा था, मैं वापस गया और इसको कुछ इस प्रकार से ले लिया, जरा सोचिए परमेश्वर कैसे, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी प्रेरणाओं में है, परमेश्वर को गीत लिखना ही है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर गीतों में है, यीशु ने ऐसा कहा है, उसने पीछे से दाऊद का उल्लेख किया, क्या तुम नहीं जानते कि दाऊद ने अपने भजन में क्या कहा, आप देखिए क्या ऐसा नहीं है, उस क्रूस की ओर देखिए, दाऊद ने इसे 22वें भजन में गाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी सारी हड्डियाँ वे मुझे घूरते हैं और उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए हैं, आप जानते हैं कि ये एक भजन था, भजन एक गीत है, और इस कविता में जरा देखिए कि ये कैसा हुआ, वहाँ एक छोटा बालक मांगे हुए कागज के पन्ने के साथ बैठा है, मैंने कहा मैं अकेला हूँ, ओ इतना अकेला, वहाँ दूर दक्षिण पश्चिम में जहाँ पहाड़ की ढाल पर गहरी छाया पड़ती है, चारों ओर गुलाबी धुंध में मैं छिपे हुए भेड़ियों को देख सकता हूँ, मैं वहाँ जहाँ लंबी घास है लोगों को शोर मचाते हुए सुन सकता हूँ, और कहीं पर्वत श्रेणियों में सिंह का गुर्राना सुन सकता हूँ, वहाँ दूर एरिजोना के कैटलाइन पर्वत श्रेणियों में 40 वर्ष पश्चात मैं वही पहाड़ियों में बैठा हुआ हूँ कि सिंह मेरे मुख की ओर ताक रहा है, ओ परमेश्वर, नदी के पार कहीं वो देश है मित्रों, वो वहीं कहीं है, समझे, उसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है, ये सारी बातें कल्पनाएं नहीं है, वे हैं, वे सही हैं, वो यथार्थ हैं। मैं आज रात्रि इन लोगों के साथ प्रसन्न हूँ जिनके लिए मैं आशा कर रहा हूँ कि वहाँ सदा उनके साथ जीवित हूँ, जहाँ फिर कोई बीमारी ना होगी या मृत्यु या अलग होना, और तब यात्रा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। अब मैं सोचता हूँ कि कोई भी प्रार्थना सभा बिना वचन के पढ़े पूरी नहीं है। और थोड़ा सा भाई नेविल, मैं जरा यहाँ चला आया। बिली ने कहा आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ। भाई नेविल, क्या ये बात ठीक थी?
जी हाँ,
मैंने जितना दिया गया था उससे अधिक ले सकता हूँ, परंतु इस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अब आप जिनके गाने और दूसरी चीजें हैं, भाई नेविल, आप देखिए कि आप कब गाना चाहेंगे और तभी गाएं। और पहले लगभग आधा घंटा भूमिका के लिए और तब सीधे संदेशों की ही गहराई में चलते हैं और देखें कि हम क्या देख सकते हैं कि प्रभु क्या करेगा। और मैं केवल विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हमारे पास सच्चाई है। मैं इससे संतुष्ट हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि गेहूँ अंततः है, छिलका इससे अलग हो रहा है, आप जानते हैं। और देखिए, कल रात मैं इसके ऊपर छोटी सी प्रस्तावना दूंगा। देखिए किस प्रकार से छिलका गेहूँ से अलग हो रहा है, परंतु गेहूँ को पुत्र की उपस्थिति में रहना है कि पके। और मित्रों, यही है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। पुत्र की उपस्थिति में तब तक रहिए जब तक हमारे लोगों का ये छोटा सा झुंड, जब तक मसीह के लिए पक ना जाए और उसकी मेज की रोटी ना हो जाए। यही है जो मैं करना चाहता हूँ। और अब कविताओं और आदि आदि को याद करने के पश्चात, इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, आइए हम फिर से प्रार्थना करें, तब हम विषय को लेने जा रहे हैं। प्रिय यीशु, अब आज रात्रि इन थोड़े से वचनों में हमारी सहायता करें, जैसा कि हम आप पर निर्भर करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा और दया हमारे साथ होगी प्रभु, और हमारे हृदयों को मुलायम करें, प्रत्येक छिलकों, कांटों, झाड़ियों को दूर कर दें। परमेश्वर, आशीषित प्रकाश इन वचनों पर पड़े प्रभु, और हमारी सभा ऐसी शानदार हो जब तक कि हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति बिना उद्धार के ना बचे। सारे बालक परमेश्वर के राज्य में होंगे, वे जो आत्मा के बपतिस्मे के बगैर हैं, होने दे कि वे इसे ग्रहण करें। पिता, होने दे कि वे सारे महान भेद जिनको हमें इस युग में जानना है प्रभु, हमारे सामने बेपर्दा हो, और हम परमेश्वर की साधारणता को देखेंगे ताकि हम जान सकेंगे कि हमें कैसा व्यवहार और कार्य करना है। अपने आप को ठीक करते हुए और अपनी देह के सदस्यों को वचन के नियम में लाते हुए, ताकि हम जान सकें कि इन दोनों में कैसे जीवित रहें जब प्रभु यीशु आ रहे हैं। आज रात्रि जैसे कि मैं आपका वचन पढ़ता हूँ प्रभु, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आपके कुछ वचनों को पढ़ने योग्य बनूँ। हो सकता है दूसरों के लिए उच्चारण ठीक ना हो, परंतु प्रभु परमेश्वर, केवल आप ही इसमें से प्रसंग निकाल सकते हैं। केवल आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है कि कभी इसे कर सके। ये आपके हाथों में है प्रभु, इसलिए हर रात्रि उन चीजों को दें जो कि आपके वचन में छिपी हैं, ताकि हम अच्छे मसीही बन सकें और समय के अनुसार रह सकें जिसमें हम रह रहे हैं, एक आदर्श मसीह की तरह। हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आप में से बहुत से जिनके पास बाइबलें हैं, मैं चाहता हूँ योना की पुस्तक निकालें। ये हम लोग हमेशा योना के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं कि वो पिछड़ गया और आदि आदि। मैंने हमेशा योना का पक्ष लिया। मैं विश्वास नहीं करता कि योना पिछड़ गया था। मैं ये विश्वास नहीं करता। मैं केवल इतना विश्वास करता हूँ, हम अक्सर इसका उपयोग करते हैं कि वो योना है। परंतु यदि हम, मैं इसके दूसरे पहलू पर पहले ही बोल चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बताया कि मैंने कैसे सोचा योना के साथ क्या हुआ। यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर, तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। क्या ये दुखित अंत नहीं है? एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में से भाग रहा है, और ये मेरा विषय है। अब पहले हम इस पर विचार करना चाहते हैं, योना वो कारण, वो विशेष कारण जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि उसने यहाँ ये बड़ा कार्य किया, क्योंकि वो यहूदी था और उससे कहा गया कि वो अन्य जातियों के शहर में जाकर उनके विरुद्ध ये ललकारे, ये सोचकर कि वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्योंकि अन्य जाति ये सोचेंगे इस यहूदी को हमसे क्या काम। परंतु आप यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, इससे पहले हमें यहाँ एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं, परंतु वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, वो सब लोगों का परमेश्वर है। उसने केवल यहूदियों को चुना। यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते थे। वे किसी विशेष कारण से चुने गए थे, और वो कारण ये था कि उन्हें व्यवस्था दी जाए और वे उसका पालन ना कर सकें। और उसने उन लोगों के द्वारा दिखाया कि व्यवस्था का पालन नहीं किया जा सकता, और वही धार्मिकता का परमेश्वर है। और व्यवस्था धार्मिकता की मांग करती है, परंतु व्यवस्था में अनुग्रह नहीं था कि मनुष्य को बाहर ले आए। व्यवस्था के द्वारा कोई दंड नहीं भरा गया था, परंतु ये अनुग्रह ही के द्वारा दंड का भुगतान किया गया था, जहाँ पर व्यवस्था हमें अलग कर देती है। और योना को बुलाया गया था, जैसे कि ये बाइबल का छोटा भविष्य दिखता है, कि वो इस नगर को जाए। और यहाँ पर हम सब अपना उदाहरण पाते हैं। हम में से प्रत्येक, हम किसी न किसी चीज से भागते हैं। हम परेशानियों से भागते हैं, हम जिम्मेदारियों से भागते हैं, हम हमारी प्रकृति ऐसा ही करने की है। हम लोग किसी का सामना करने के बजाय भागने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। देखिए, हम अपने को भागते हुए पाते हैं। कभी कभी हम अपने को काम से भागता हुआ पाते हैं। हम नहीं चाहते, हम काम करना नहीं चाहते। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना कमाए ही वो अपना जीवन चला सकते हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि वो सुलेमान ही है जिसने कहा था कि हम चींटी को देखकर इसका उत्तर पा सकते हैं। आप जानते हैं, एक छोटी चींटी मुझे बताती है, यदि वो प्रत्येक चींटी काम ना करे और जमा ना करे, तो यानी वो चींटी उस जाड़े की ऋतु में खाना नहीं खाती। इसलिए हर एक को कार्य करना है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका सामना करना है। प्रत्येक को किसी निश्चित जिम्मेदारी का सामना करना है। जब आप अपनी पत्नी का चुनाव करने पर आते हैं कि विवाह करें या पति को चुने, तो आपकी एक जिम्मेदारी है। और तब आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है आप एक घर बनाएं, वो सुंदर अच्छा घर हो, और तब विवाहित स्त्री होने के नाते सोचें, आपको बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए सोचना है। और तब आपको उन सुंदर चिकनी साफ दीवारों के लिए सोचना है कि इन सारे पर नन्हे नन्हे गंदे हाथों के निशान लगने वाले हैं। तब आपकी जिम्मेदारी उन अपने बच्चों को पढ़ाने की है। आपकी जिम्मेदारी कपड़े पहनाने और खिलाने की है। हर चीज जिम्मेदारी है, और ये बहुत सरल है। जब जिम्मेदारियां हमारे सामने आए, तो उनसे बचें। और हम पाते हैं कि विवाह एक जिम्मेदारी है, और सारे शिष्टाचार, यहाँ तक कि बहुत सी बार हम पाते हैं, ये कहने में सख्त है परंतु ये सच है, बहुत सी बार सेवक लोग परमेश्वर के सच्चे वचन के पक्ष लेने की जिम्मेदारी से बचते हैं। जब उनका सामना इससे होता है, वे उस जिम्मेदारी से भागेंगे, वे उस जिम्मेदारी से भागेंगे। जब हम मनुष्यों के सामने परमेश्वर के वचन की सच्चाई लाई जाती है, हम जब तक अंतिम सहारे तक नहीं पहुंच जाते, हम भागने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैं अपने छोटे भतीजे से वहाँ पर बात कर रहा था, वो कैथोलिक है, और वो, मैंने कुछ वर्ष पूर्व लड़के का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में दिया, और उसके किसी छोटी लड़की के साथ, और वो कैथोलिक हो गया। और मैंने उसकी माँ का हाथ पकड़ा जब वो वहाँ मर रही थी। उसने मुझसे अंतिम शब्द कहे, मेलविन की देखभाल करना, और वो सपने देख रहा था। वो तो नहीं कर सकता, हर दिन पिछले सप्ताह वो सपने देख रहा था। बोला कि मैं आपकी गिरजे में आऊंगा अंकल बिल, और आप वहाँ खड़े प्रचार कर रहे थे, मैं पाप स्वीकार करने के लिए दौड़ाऊंगा, मैं जाग जाऊंगा। उसने कहा, मैं गलत रहा। मैंने कहा, मेलविन, तुम्हें इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा स्थान वहाँ नीचे है जहाँ से तुम संबंधित हो। ये ठीक बात है, देखा। परंतु जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए कभी कभी हमें छिपने के लिए दूर ले जाता है। ऐसा करने के लिए पिता होने के नाते जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए अपने बच्चों को कोड़े लगाता है। उन छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा करना नहीं चाहते, परंतु एक पिता या माता होने के नाते उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए आप जिम्मेदारियों का सामना करते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा, छड़ी को अलग रख और अपने पुत्र को बिगाड़। और ये आज भी संसार में हर मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में अच्छा है। परमेश्वर का ये सत्य अब तक बना हुआ है। यदि इसका अधिक प्रयोग किया जाता, तो हमारे यहाँ इतने बाल अपराध और बकवास और सड़ाहट जो आज संसार में है ना होता। परंतु परिवार के पुराने सुनहरे नियम बहुत समय पहले तोड़ दिए गए और वे बालकों को जो भी वह चाहते हैं करने देते हैं। परंतु और भी जैसा मैंने कहा, सेवकों वे सत्य के आमने सामने होंगे और तब इससे दूर चले जाएंगे। देखिए वे कुछ वहाँ कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसका सामना नहीं करना चाहते। बहुत सी बार मेरे पास लोग आकर कहते हैं, भाई ब्रैनम मैं जानता हूँ कि ये ठीक है, परंतु यदि मैं ऐसा करूँ तो वो मुझे गिरजे से बाहर निकाल देंगे। इससे क्या, यदि आप नहीं करते तो वे आपको बाहर निकाल देंगे। इसलिए आपको कहीं बाहर निकलना ही है, देखा। इसलिए हो सकता है आपको इसका सामना करना है, बजाय इसके कि इससे भागे और कहें, भाई मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। वापस जाना, निश्चय ही कुछ और सुनना है। लेखों में ढूंढो, यीशु ने कहा, शास्त्रों में ढूंढो। तुम सोचते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है और वही है जो मेरी गवाही देते हैं, परंतु हम पाते हैं कि लोग इससे सामना नहीं करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में लाए गए और देखते हैं जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के लिए बाध्य है, और जब वो प्रतिज्ञा को पूरा करता है, तब लोग उस संदेश से जो उस समय के हिसाब से है, जिम्मेदारी का सामना करने से डरते हैं। ये हम सब जगह पाते हैं। आप लूथरन के विषय में क्या है, कितने लूथरन डरे थे, लोग लूथर की सच्चाई से जब वो न्यायोचितता के साथ आई तो उसका सामना करने से डरे। देखिए इसकी क्या कीमत आपने चुकाई। हो सकता है आपका अपना जीवन बाहर निकलकर और यीशु मसीह को स्वीकारना और एक लूथरन हो जाना। मेथोडिस्टों को देखिए कैसे हुआ करता था, आप सब होली रोलर कहलाते थे, मुझे लगता है आप ये जानते हैं, और वे आत्मा के प्रभाव में आ जाते और आगे पीछे झटका देते और उन्हें कहा कि उन्हें झटके लगते हैं। वो पेंटिकोस्टल नहीं, बहुत वर्षों पहले वे मेथोडिस्ट ही थे। वे झटकते और हिलते और परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव में गिर जाते। वे उनके मुंह पर पानी डालते और उन्हें पंखा करते और सोचते कि वे मर गए। और अब आपको होली रोलर समझा गया था, परंतु आपके माता पिता थे, या तो इसे ग्रहण करना था, सच्चाई और तथ्य का सामना करना था, या उसे छोड़ना था। तुम पेंटिकॉस्टलों को क्या हुआ जिन्होंने वरदानों को वापस पाया, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अन्य भाषाओं के बोलने के साथ आया और आत्मा के वरदान कलीसिया में वापस आए। मेथोडिस्ट के लोगों ने क्यों आपको बाहर निकाल देना चाहा और उन्होंने ये कार्य किया, परंतु आपको इसका सामना करना ही था। ये कुछ ऐसा था जिसे आपको करना था। उस विवाद विषय का क्या हुआ जब वो यीशु मसीह के बपतिस्मे के साथ आया और आपने इसे देखा, ये बिल्कुल सत्य था। आपको इसका सामना करना ही है या इसके लिए कुछ करना है। आपके पास एक जिम्मेदारी है, हर एक के पास है, और आपको इन बातों का सामना करना है, ठीक है। और जब आप इन दिनों में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन ने इन बातों की प्रतिज्ञाओं को किया है जिनको अब हम होते हुए देखते हैं, तब हम पर जिम्मेदारी आती है कि या तो उसका सामना करें या उससे बचकर दूर हट जाएं। आपको करना है, आप तटस्थ नहीं रह सकते। इस विषय में आपको कुछ करना ही है, कहा कोई तो कार्य करना ही है। आप उस गिरजे के दरवाजे के अंदर आकर और उसी व्यक्ति के रूप में बने रहकर बाहर नहीं जा सकते। या तो आप और दूर चले जाएंगे या परमेश्वर के समीप आ जाएंगे। हर बार आप अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे। ओ लोगों के लिए कितना सरल है कि इन बातों से बचें। और मैं चाहता हूं कि हम इन बातों पर सोचें जब हम अपनी निश्चित ठहरी सभाएं कल रात्रि आरंभ करते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें जब कोई चीज सामने आती है। यदि उस विषय में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। थोड़ी देर के लिए मैं कहूं, मैंने कहा मैं पश्चिम में जा रहा था और तुमने मुझे इस ओर निर्देशित कर दिया, ठीक है। पहली बात आप जानते हैं, मैं अपनी सही लक्ष्य से हट जाता हूं, और मैं उत्तर पश्चिम में हूं, ठीक है। क्या हो यदि कोई मुझे इस ओर निर्देशित करे और मैं उस मार्ग पर चलूं, तो मैं फिर से अपने लक्ष्य से हट जाता हूं, मैं पश्चिम दक्षिण में गया, ठीक है। जब तक प्रश्न है कि कौन सी ओर पश्चिम है, तो कहीं पर इसका सीधा उत्तर है। और जब ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं बाइबल की सच्चाई के विषय में, तो कहीं तो सही उत्तर है, ये ठीक है, कहीं तो होना ही है। और जब हम देखते हैं कि कोई चीज सामने आई, मैं सोचता हूँ कि बजाय इसके कहें कि ओ निर्थक विचार, मैं इसका विश्वास नहीं कर सका, इस प्रकार की बात का मैं विश्वास इसका विश्वास नहीं कर सका, क्यों नहीं आप बाइबल को लेकर और बैठें और इसका सामना करें, अध्ययन करें। आप यहाँ अब सभा में हैं, जरा इस पर ध्यान दें, अपने आप जांचें वचन के साथ, शब्द शब्द करके जांचें। यही एक विधि है करने के लिए जो सत्य बताती है, और इसे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सत्य बताना ही है। मसीह पूरी बाइबल का प्रकाशन है। उसमें मसीह में बाइबल की सारी भविष्यवाणियां बिना किसी शर्त के यीशु मसीह में पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि वो शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर था। तो भी अब जब हम इन बातों को पाते हैं, जब हम आमने सामने होते हैं और सभा में आते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को चलते फिरते और काम करते और अलौकिक कार्य करते देखते हैं और देखते हैं कि इसने किए और बाइबल में देखते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रतिज्ञा इस समय के लिए है, तब जब हम इन चीजों को देखते हैं, तब हमारा सामना हमारी जिम्मेदारी से होता है कि हम इसे ग्रहण करें। जैसा कि मेरा अर्थ हम लोगों से है, बहुत से लोग अब सहानुभूति प्रकट करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये ठीक है, परंतु इससे नहीं होता, इससे बात नहीं बनती, ये वो बात नहीं है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैंने कहा, क्या हो यदि कोई नवयुवक अपने लिए विवाह हेतु पत्नी ढूंढता हो और यहाँ एक लड़की खड़ी हो जो हर योग्यता पूरी करती हो, जिसको मैं सोचूं कि इसे लेकर अपनी स्त्री बनाऊं, क्योंकि आचरण से वो एक रानी थी और सुंदर और बढ़िया व्यक्तित्व, एक सच्ची मसीही, हर चीज जो मैं एक अच्छी पत्नी के लिए सोच सकता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना भी कहूँ कि वो सिद्ध है, वो बिल्कुल ठीक है, वो तब तक मेरी नहीं है जब तक मैं उसे ग्रहण ना करूँ और पत्नी होने के लिए उसकी जिम्मेदारी ना लूँ। बिल्कुल यही बात संदेश के लिए है। आप कह सकते हैं ये ठीक है या वो था और कुछ और, कहें मुझे इसके साथ सहानुभूति है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है, परंतु आपको इसे ग्रहण करना है और इसको आपका भाग बनना है और आपको इसका आपके पास है, तब ये आपका है। जब तक आप निश्चित स्त्री से विवाह करते हैं जिसको आपने चुना है, तब आप एक हैं। और इसी तरह से आप मसीह के साथ, जब आप उसे प्रकट होते हुए देखते हैं और सही में करते हैं, तब आप उसका भाग होते हैं और वो आपका भाग होता है और कुल मिलाकर आप संदेश का भाग होते हैं। ओ, कितने ही उपाधि वाले जहाज हम पाते हैं कि आज के योना की तरह तर्शीश को जा रहे हैं। 900 को जहाज जिन्होंने सरल रास्ता लिया है, इससे सामना नहीं करना चाहते। योना उन बातों से जो अन्य जातियों में चल रही हैं सामना करना नहीं चाहता, वो इस क्रूर संदेश को वहाँ ले जाना नहीं चाहता। यदि तुमने 40 दिनों के अंदर प्रायश्चित नहीं करोगे, ये करना उसे पसंद नहीं था और उसने सोचा उन अन्य जातियों को ये बताना कठिन कार्य है, वे मेरे साथ क्या करेंगे, परंतु उसे इसका सामना करना था। देखा, परंतु उसने सरल जहाज पकड़ा और तर्शीश चला गया, जहाज के निचले ढांचे में जाकर और सोने चला गया, सरल मार्ग लिया। ये सरल मार्ग है लोगों के लिए, ये लोकप्रिय मार्ग है, ये बहुत सरल मार्ग है जहां लोग आपकी पीठ थपथपा सकते हैं और कहें कि आप अच्छे व्यक्ति हैं और ये ऐसा ऐसा है और वो ये है और संसार आपकी ओर देखेगा। लोकप्रियता के मार्ग पर जाना सरल है, परंतु जब आपको कुछ भिन्न करना हो, जब आप अपने दृढ़ विश्वास पर स्थिर हो, जिसे आप जानते हैं कि ये सत्य है, ये वही है जो कठोर भाग है, तब वहाँ रगड़ाई होती है। ओ, जैसे कि हम प्राय वो पुराना गीत गाते हैं, जब सागर शांत हो, नाव खेना कितना सरल है, यहोवा के महान बलशाली भुजा पर विश्वास करना, परंतु लहरों को उठने दो, हवा को चलने दो, जब लहरें थपेड़े मारे तब आप क्या करते हो? कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने एक बार बताया था कि उस महिला ने कहा, उन पहले घोड़ों और बग्गी के दिनों में, उसने कहा गिरजे से जाते समय घोड़ा उनको लेकर दौड़ गया, बोली कि आप क्या कर सकते हैं, बोली जब तक रेखाएं नहीं टूटती तब तक मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। वही समय है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करें, हर एक के बाद रेखाओं के टूटने के बाद, आप तब तक विश्वास करते हैं जब तक वे रेखाएं सामान्य जीवन की टूट नहीं जाती। जी हाँ, और इसलिए हम पाते हैं कि हमारे पास जाने के बहुत से सरल मार्ग हैं, जहाज तर्शीश को जा रहे हैं, क्योंकि ये सरल है। गैर जिम्मेदारियाँ, आपके पास हर चीज आ रही है, वो अंदर की ओर बहता है, हर कोई आपको पसंद करता है और हर व्यक्ति आप एक, आपसे कोई असहमत नहीं, आप किसी से असहमत नहीं। अब यदि वो बर्तन पोछने का कपड़ा ना हो, ये ठीक है, जी हाँ, ऊपर उठो, फड़फड़ाओ, क्यों, कोई क्यों ना हो, मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन हैं और किस लिए खड़े हैं। सचमुच अच्छे विचार वाले लोग आपके विषय में अधिक सोचेंगे यदि आप अपने दृढ़ विश्वास पर स्थिर रहेंगे कि जो सही है सही है। चिंता ना करें, आप एक स्त्री को लें, हो सकता है वो बहुत आकर्षक ना हो और वो जो कुछ भी है, परंतु आप उस स्त्री को उसके स्त्रीत्व के लिए, सिद्धांतों के लिए स्थिर रहने दें, उसे स्त्री की तरह ही स्थिर रहने दें। यदि मनुष्य में अपने ही लिए थोड़ी भी मानवता है तो वह उसका पक्ष शुद्ध रूप में लेगा। हम उस चीज की सराहना करते हैं जो कि किसी में है, जिसका वह विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, और जो वह सोचते हैं कि ये ठीक है उसके पक्ष में खड़े होते हैं। आज किस तरह से बहुत सारे मसीही जो ढीले ढाले हैं, वो इतने अस्थिर से और बहुत कुछ, जब तक वे ये नहीं सोचते वो सब जो वे करते हैं कि किसी गिरजे की सदस्यता लेना, कहीं जाना, अपना नाम रजिस्टरों में चढ़वाना, या कुछ छोटा मोटा करना, ऊपर नीचे कूदना, चिल्लाना या ऐसा ही कुछ, उसे मसीहत कहते हैं। मसीहत प्रत्येक दिन एक उबड़ खाबड़ जीवन है, इस वर्तमान संसार में परमेश्वर के लिए जीवित रहना। ये तो हृदय में निरंतर जलने वाली आग है और परमेश्वर का प्रेम है जो कि आपको लोगों के सामने रखता है, और वो लगी हुई आग मसीह के लिए स्वधर्मी त्यागी बना देती है। जिम्मेदारियाँ, परंतु जिस मार्ग पर संसार चल रहा उस पर चलना सरल है, धारा के साथ बहना सरल है। वहाँ जाकर नदी में अपनी नाव में बैठ जाओ, अपनी पतवार लेकर धारा के विरुद्ध खेना आरम्भ करें, अधिक समय नहीं बीतेगा और वो कठिन हो जाता है। परंतु आप अपनी पतवारों को छोड़ दें और देखिए कि पेड़ कितनी जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं और पीछे की ओर, परंतु देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। जब सब चीजें आराम से चल रही हैं, याद रखिए आप किसी प्रकार के महान मोतियाबिंद की ओर बढ़ रहे हैं। आप गिरावटों की ओर जा रहे हैं और अधिक समय नहीं बीतेगा जब तक कि आप उस गिरावटों में की ओर पहुंच जाएंगे। जरा सा संसार के साथ चलिए, मार्ग सरल होता है, आप वो नहीं चाहते, नहीं श्रीमान, परंतु आपको अपनी जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए। अब आप इसका विश्वास करते हैं और आप सोचते हैं कि ये सत्य है, और जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने हमें इस दिन में दी हैं कि इस संदेश को लाएं, और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं और मैं जानता हूं कि मेरे दिन कम होते जा रहे हैं, मैं ये अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी पहले से जो मैंने कभी अनुभव की थी अब अधिक है। बढ़ते जाओ, हमें ये करना ही है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें इस संदेश को ले जाकर बताना ही है, और लोगों को बताना है कि यीशु मसीह आ रहा है, कि वो परमेश्वर है और वो जल्द आ रहा है। अब संसार में कोई आशा नहीं है, केवल प्रभु आ रहा है। उन लोगों को पीछे मुड़कर देखता हूँ जो कि मेरे साथ जब थे, जब प्रभु का दूत इन लड़कों ने जो यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वो स्थान पा लिया है जहाँ ये घटित हुआ। और केवल याद रखिए, उस दिन प्रभु ने भाई वुड से क्या कहा जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे और वो एक प्रकार से रो रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी, और प्रभु ने कहा उस पत्थर को लो और उसे ऊपर हवा में फेंको और कहो यहोवा यूं कहता है, और मैंने ये किया। और भाई वुड एक गवाह के रूप में बैठे हैं, और मैंने कहा भाई वुड अधिक समय नहीं बीतेगा कि आप कुछ घटित होते हुए देखेंगे। और अगले दिन जब हम वहाँ खड़े थे और उन लोगों का झुंड आज रात्रि में भी यहाँ खड़ा है, एक नवयुवक प्रचारक वहाँ था और वो था, मैंने ध्यान दिया और मैं भी एक रात्रि पहले उनसे मिला हूँ, वो हमारे कैंप में था, वो हमारे साथ आया और उसने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम क्या आप कभी इस प्रकार के दर्शन देखते हैं जैसा कि ये है। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, परंतु मैं यहाँ पर इससे अलग रहने आया हूँ ताकि थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो बोला अच्छा है। मैंने कहा मैं जीवनचर्या में वो मुझे चीजें यहाँ दिखाता है, और मैंने कहा पहाड़ पर यहाँ जहाँ सात सरदूत वहाँ प्रकट हुए, उसने कहा मैं समझता हूँ। बोला मैं जो आपकी सभाएं कैलिफोर्निया में हुई उसके जामिनों में से एक था। मैंने कहा अच्छा, मुझे ये जानकर निश्चय ही प्रसन्नता हुई है। और वहाँ खड़े हुए तब मैंने चारों ओर देखा और मैंने एक भारी भरकम डॉक्टर को देखा जो उसकी आंखों में देख रहा था, और मैंने उसे ये कहते सुना कि तुम अपनी ये आंख खोने जा रहे हो क्योंकि उसमें है, और मैंने 2 वर्ष तक इसका इलाज किया है और आप इस आंख को खोने जा रहे हैं। मैंने कहा यही कारण है कि तुमने मुझसे ये पूछा क्योंकि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें उस दिन ये बताया कि तुम ये आंख खोने जा रहे हो, और उसने कहा ये ठीक है। और उसने चारों ओर इस प्रकार से देखा, और मैंने देखा कि उसकी माता ने अपना एक लंबा मोजा उतारा और अपना पैर बाहर निकाला जिसमें कि उनके पंजों के बीच में ट्यूमर लटक रहा था, उसकी टांग के ऊपर नीचे, और बोली यदि तुम भाई ब्रैनम से मिलो तो उनसे इसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहना। और मैंने कहा तुम्हारी माँ ने अपने हाथ से अपना पैर इस तरह से बाहर निकाला, और उसने कहा कि उनके पंजे के बीच में छोटा सा ट्यूमर है और इस तरह है, और कहा भाई ब्रैनम प्रार्थना करें। वो बोला भाई ब्रैनम ये सत्य है। जब मैंने पीछे देखा मैंने उसे अपनी ओर उसकी चमकदार आंखों के साथ इस तरह से देखते देखा। मैं उससे इस बर्फ गिरने के समय मिला, उसकी आंखें जितनी भी कैंप में थे उन सबसे अच्छी थीं। प्रभु ने उसे चंगा किया और अच्छा कर दिया। जबकि मैं वहां खड़ा हुआ था, प्रभु ने कहा उसने मुझे दिखाया कि क्या घटित होने जा रहा है, न्याय पश्चिमी किनारे पर लागू होने जा रहा है और उसने कहा जाकर उस आग वाले स्थान के पास खड़े हो और मेरे हाथ में बेलचा था और मैं वहाँ गया और भाई रॉय रॉबर्टसन हम सब उसे यहाँ जानते हैं वो आज रात्रि यहाँ नहीं है जैसा कि मैं जानता हूँ वो वहाँ एरिजोना में है वो यहाँ ट्रस्ट का अध्यक्ष है और मैं उसे एक अनुभवी के रूप में जानता हूँ और कुछ घटित होने जा रहा था। एक सुंदर शांत प्रातः भी प्रातः के लगभग 10 बजे थे और हम में से 10 या 12 लड़के वहाँ थे तो मुंह को गिरा रहे थे और सूरों की खाल उतार रहे थे और आदि आदि और इसलिए हम मैं वहाँ निकला और मैंने कहा रॉय जल्दी से छिप जाओ कुछ घटित होने जा रहा है। मैं इससे अधिक नहीं बता सका परंतु समय पर मैं वहाँ पहुँचा और स्वर्ग से परमेश्वर का चक्रवात उतरा और ऐसा धमाका हुआ कि पहाड़ हिल गए। पहाड़ पर घूमते हुए चारों ओर धारियाँ काट दी मेरे सिर से लगभग 5 फीट ऊपर और पेड़ों की सारी खुनगियाँ चोटियाँ काट कर अलग कर दी जैसे कि चट्टान टूट गई। ऊपर हवा में गया और फिर वापस आया उस दूसरे बड़े बपतिस्मे के साथ और पहाड़ पर टकराया और इस तरह से चट्टाने उड़ा दी। ये 3 बार किया और ऊपर आकाश में चला गया और भाई बैंक मेरे पास आए कहा ये वही है जो आपने कल कहा। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान ये बिल्कुल वही है देखा। और तब 2 दिन बाद अलास्का लगभग वहाँ डूब गया और वो पश्चिमी किनारा ऊपर और नीचे गर्जने और झटके और हर चीज घटित हुई और किसी एक दिन वो सरकती हुई समुद्र के नीचे जाने वाली है। ये ठीक बात है ये क्या है हम प्रभु के आने के समय में रह रहे हैं। जब हम वादों और चीजों को उठते हुए देखते हैं तब ये विभिन्न प्रकार की चीजें हम जानते हैं कि कहीं इन सब का सही उत्तर है। वहाँ बाहर के देश के हिस्सों में लोग गुफाओं और जगहों में जा रहे हैं और 16 मार्च को आपने अखबार में पढ़ा होगा कि प्रभु आ रहा है। आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति उस मिनट या समय को नहीं जानता। जब हम देखते हैं कि ये सारी बातें और चीजें जिस प्रकार से घटित हो रही हैं और इनका कहीं तो सही उत्तर है कहीं तो भी सत्य है। एक पूर्व है एक पश्चिम है परंतु एक पूर्व दक्षिण है और उत्तर पश्चिम है या ऐसे ही कुछ और परंतु कहीं तो कोई सही उत्तर है इस प्रश्न का। इससे बचकर भागो। हमें लोगों को बता देना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र की आगमन की घड़ी में रह रहे हैं। हम चाहते हैं हम ध्यान देना चाहते हैं और परमेश्वर हर समय मनुष्य को सही उत्तर देने के लिए तैयार है। हमेशा इसी प्रकार से हुआ है। ये मनुष्य में है कि बचकर परमेश्वर से दूर भाग जाए। ये जब से आदम अदन वाटिका में था चला आ रहा है। जब आदम अदन वाटिका में था जब वो जिम्मेदारी में आया कि अपना चुनाव करे चाहे वो परमेश्वर के साथ रहे या अपनी पत्नी के साथ चले उसको ये करना था ये उसको करना था ये जिम्मेदारी उस पर थी। या तो उसको वो लेना था जो उसकी पत्नी ने कहा था या जो परमेश्वर ने कहा। और जब उसने अपनी पत्नी के साथ जाने का मार्ग चुना और जब उसने ये किया तब उसने अपनी मूल अवस्था को खो दिया और समस्त संसार को मृत्यु के अधीन कर दिया। जब उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी थी या फिर नई ज्योति जो उसकी पत्नी ने पाई थी उसे ग्रहण करना जो कि विपरीत थी। ओ परमेश्वर इस पर सोचिए। परमेश्वर ने उन्हें केवल 8 या 10 वचन पालन करने के लिए दिए थे। केवल उस वृक्ष से तू ना खाना उन्हें केवल इसी का पालन करना था और यहाँ तक कि बहुत वचन उन्होंने तोड़े। तब आदम को सामना करना था क्या मैं वो करूंगा जो मेरी पत्नी ने करने को कहा या मैं वो करूं जो परमेश्वर ने करने को कहा। और वो अपनी खुली आंखों के साथ बाहर चला गया। उसे जिम्मेदारी लेनी ही थी जिसने सारी मानव जाति को मृत्यु में डाल दिया। तब दूसरा आदम आया जो कि मसीह था उसके समान एक भी नहीं। कोई कहता है वो परमेश्वर नहीं था उसकी अनुपमता ने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर था। कभी भी कोई जीवधारी उसके समान नहीं जिया था। वो अपने ही संसार में जीवित रहा। वो शारीरिक प्रकृति के चित्र से बाहर उत्पन्न हुआ। हालेलुया वो स्वयं अपना रचयिता शरीर बना। कौन है जो वहाँ खड़ा हो जहाँ वो खड़ा था किसने उसके समान बातें की कौन उसके समान बातें कह सकता है जो उसने कही कौन उसके समान कभी काम कर सकता है जो उसने किए। उसकी अनुपमता ने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर था। कहीं भी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ था या कोई भी वो नहीं कर सकता जो उसने किया। कौन है जो मृत को कब्र में से वापस बुला सकता है और कौन है आकाश को रोक सकता और कुछ भी करे जो वो करना चाहे। वो परमेश्वर था। कौन उसके स्थान पर खड़ा हो सकता है कौन हो सकता है। केवल वो सिद्ध अमरणहार परमेश्वर शरीर बना और हमारे बीच वासा किया। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। वो अपने स्वयं के संसार में रहा। कोई भी मनुष्य उसके समान नहीं बोला। उसने जब भी अपना जरा सा मुख खोला तब तो कुछ ऐसा होता था जो कि किसी से भी भिन्न होता था। किसी ने कहा वो तो केवल साधारण मनुष्य था मैं इसकी परवाह नहीं करता। वो परमेश्वर था वो यही था क्योंकि कोई मनुष्य कभी उसके समान नहीं बोला, कोई व्यक्ति उसके समान नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जीवित वचन था, स्वयं शरीर बना, परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण। मैं उन भविष्यवक्ताओं को स्वीकार करूंगा, उनका संदेश उनके पास था, उनके पास वे तब भी थे, उनके पास वे अब हैं। परंतु उसमें परमेश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव प्रकट हुई। वो एक अनुपम था और वही एक था जिसको विवाद विषय का सामना करना था, अपनी उस महान सामर्थ्य के साथ जो उसके पास थी कि वो इस संसार का सर्वोच्च राजा था। वो होगा और वो अब अपने संतों के लिए है। वो वहाँ खड़ा हुआ, कितना निर्धन मनुष्य होगा कि सर रखने की भी जगह नहीं, जो ये भी जानता है कहाँ मछली ने सिक्का सटका है। वो क्या व्यक्ति हो सकता है जो बड़े घड़ों में पानी लेकर उसे दाख रस में बदल दे और अपने सिर रखने को जगह ना हो। उसे अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना था जो कि उसके हाथों में सौंपी गई थी। क्या मनुष्य है जो चार दिन से मरे हुए और सड़े हुए मनुष्य को उठाकर खड़ा कर दे? क्या वो अपने को नहीं बचा सकता था? बिल्कुल वो कर सकता था, परंतु यदि वो ये करता तो वो हमें नहीं बचा सकता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना था और क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता वचन के लिए थी, जबकि आदम का आज्ञा न मानना और उसने छोटा मार्ग तर्शीश का लिया, परंतु यीशु ने निनवे का अन्य जाति का मार्ग लिया कि अपने लिए दुल्हन ले ले। मैं प्रसन्न हूँ कि उसने आज रात्रि ये किया है, और हमें सत्य का सामना करना चाहिए कि हम उसके हैं और संसार को दूर हटाएं। आमीन। हर व्यक्ति को इसका सामना करना है, परमेश्वर के सामने ये उसकी जिम्मेदारी है। हम थोड़ी सी देर के लिए नूह को लें। उसकी थी नूह, मूसा, एलिया और वो सब बाकी लोगों की हर युग में उनकी जिम्मेदारी थी और उन्हें ये करना था। केवल यही कारण था कि वे समय पर भेजे गए। नूह को उसके वैज्ञानिक युग में देखिए कैसे उसको बिल्कुल अवैज्ञानिक बात का सामना करना पड़ा। क्यों? वहाँ एक भी कारण ना था। ये क्यों नहीं अवैज्ञानिक हो सकता है? देखिए, बल्कि ये अवैज्ञानिक था। क्यों? उन्होंने कहा आकाश से वर्षा होने जा रही है। उनके ऊपर आकाश से कभी भी एक भी बूंद बारिश की नहीं पड़ी थी। अब उसे इसका सामना करना था। परमेश्वर ने कहा कि वर्षा होने जा रही थी और तब विश्वास बिना कर्मों के मृत है। यदि आप कहते हैं कि मैं इसका विश्वास करता हूँ और कोई कार्य नहीं करते, जिस प्रकार की संदेश आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ और कर्म नहीं करते, तो इससे क्या लाभ होगा? समझे? नूह अपने हथौड़े के साथ काम करने को चला गया और जहाज बनाया इसकी पुष्टि करने के लिए कि वो किस विषय में बातें कर रहा है। यही हमें भी करना है। हमें काम पर जाकर अपने विश्वास को सिद्ध करना है अपने कामों के द्वारा। हमारे काम हमारे विश्वास को सिद्ध करते हैं। मूसा को यही करना था, एलिया को यही करना था, हर भविष्यवक्ता को अपने युग में खड़े होकर अपनी इन जिम्मेदारियों का सामना करना था। परंतु बहुत से योना को पसंद नहीं करते, वो भागा, वे नहीं भागे। ध्यान दें, इसके विरोध में चिल्लाएं। ओ, ये यहाँ है, ये विषय है, इसके विरोध में चिल्लाएं, ये जांच का भाग है। जरा वहाँ जाकर और उन लोगों को बताओ, कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होने आ गया हूँ। आप जानते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करूंगा। यहाँ मेरे पास एक छोटी सी चीज है, मैं विश्वास करता हूँ मैं इसको बना सकता हूँ। हम सब एक साथ मिल जाएं और ये करें वो करें या कुछ और। परंतु इसके विरोध में ललकार थी। जब आपको किसी चीज के विरोध में चिल्लाना होता है, अब उसे हर चीज के विरोध में चिल्लाना था जो वहाँ थी। उस नगर के विरोध में चिल्लाना था, उनके कार्यों के विरोध में चिल्लाना था, उनके गिरजे के विरोध में चिल्लाना था, उनके भविष्यवक्ताओं के विरोध में चिल्लाना था, उनके सेवकों के विरोध में चिल्लाना था, उनके पुरोहितों के विरोध में चिल्लाना था, सारी बातों के विरोध में चिल्लाना था, विरोध में चिल्लाना था। नूह अपने युग के विरोध में चिल्लाया, निश्चय ही वो युग के गिरजों के विरोध में चिल्लाया, निश्चय ही मूसा अपने युग के विरोध में चिल्लाया, उन लोगों पुरोहितों और वगैरह वगैरह, वो सारे रास्ते जंगल में चिल्लाया और हर दो राहे पर वो लगातार लोगों पर चिल्लाया। एलिया अपने समय में बहुत ही अप्रिय था क्योंकि वो उस युग के विरोध में चिल्लाया, निश्चय ही वो था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने समय में अप्रिय था, वो अपने युग के विरोध में चिल्लाया। उसने राजा से कहा, उस देश का शासक था, उसने अपने भाई की पत्नी से विवाह किया, एक प्रातः उसे विवाह और तलाक पर प्रचार करना था, इसलिए वो इस विरोध में चिल्लाया। उसने कहा, तेरे लिए उचित नहीं कि तू उसे रखे। बाद में उसे इसका भुगतान अपना सर कटवा कर करना पड़ा, परंतु वो चिल्लाया और अपने कर्तव्य के स्थान पर खड़ा हुआ। उसने कभी भी तार्शिश के लिए जहाज नहीं पकड़ा और कहा, अच्छा हृदय, मैं तुमसे सहमत हूँ, ये ठीक है। जब तक आप सोचते हैं कि ये अच्छी महिला है, वो आपकी अच्छी पत्नी बन सकती है, तो आप आगे बढ़िए। ओ अनुग्रह, उन बर्तन पोछने के चित्रों पर देखा आपने? जी हाँ, बहुत छोटी चीज है वो, छोटी चीज क्यों, वो कुछ नहीं है, परंतु उससे गंदी प्लेटों को साफ करते हैं। परंतु ध्यान दें, यूहन्ना ऐसा नहीं था, उसने सीधे इसका सामना किया। उसने कहा, तेरे लिए उचित नहीं कि तू उसे रखे। जी हाँ श्रीमान, और वो उसके विरोध में खड़ा हुआ। वे कभी भी नहीं भागे, यूहन्ना भी नहीं, उन्होंने खड़े होकर तथ्य का सामना किया। यूहन्ना की तरह एक बार मूसा ने भी भागने का यत्न किया, परंतु परमेश्वर ने उसे वापस ले आया। बहुत सोने बचने का यत्न किया, वे आरंभ करते हैं, परंतु देखिए, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आप निश्चित हैं कि परमेश्वर संदेश में है, तब कुछ भी आपको वापस नहीं फिरा सकता। इससे योना वापस नहीं हुआ, नहीं श्रीमान। पुराने का आमोस चिल्ला उठा, कहा, सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? और परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा, कौन भविष्यवाणी न करेगा? जब आप देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है और कहता है कि अमुक बात घटित होगी, और वो ये है, एक सिंह गरजता है और हर कोई डरता है। जी हाँ श्रीमान, यदि आपने कभी जंगल में एक दहाड़ सुनी हो, आप पिंजरों के पास उनकी म्याऊ सुन सकते हैं, उन पालतू सिंहों की, परंतु आपको जंगल की मूल दहाड़ एक बार सुननी चाहिए। 500 गज दूर से चट्टाने पहाड़ से गिर जाएंगी। मैं नहीं समझ पाता कि ये टकराना कहाँ फेफड़ों में से आता है, और वो अपना सर नीचे करता है और बालों को खड़ा कर लेता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना जैसा कि एक एक पर्वत श्रेणी की लंबी कतार जब वहाँ अपने फेफड़ों की बड़ी दहाड़ से गरजता है। कौन है जो ना डरेगा? वे कहते हैं, यदि आप कभी सिंह के द्वारा मारे जाएं, तो ये दर्द रहित है, वो आपको डरा कर ही मार देता है, इससे पहले वो आपको पकड़े। देखिए, आप इसका ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको बड़ी भयानक दहाड़ से डरा देता है और वो आपके ऊपर पलक झपकते आ पड़ता है। उसने कहा, सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? और परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? जब आप देखते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है, आप कहते हैं, मैं तो भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता। योना ने कहा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता या भविष्यद्वक्ता का पुत्र, परंतु परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता, मैं ये वो नहीं हो सकता या कुछ। जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर कुछ भी कर रहा है और मैं देखता हूँ कि ये वचन में है और उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, तो कौन शांत और चुपचाप रह सकता है? निश्चय उसने ये किया है। ना ही हम धार्मिक मतों के पीछे छिप सकते हैं और ना इन सब संगतियों में और ना वहाँ तर्शीस में, हम उन सभाओं में जाना नहीं चाहते, परंतु बहुत से आदम की तरह वही कार्य करते हैं, कोई एक उपस्थान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, किसी प्रकार से बचने का मार्ग पाने का यत्न करते हैं और परमेश्वर का सामना करने के लिए उपस्थान बनाते हैं। अपनी गलती जानने के बाद सत्य का सामना किया, अपनी पत्नी के साथ चला गया और बिल्कुल वही किया जो कि परमेश्वर ने करने के लिए मना किया। वो सीधा आगे बढ़ गया और कैसे भी वही किया। तब उसने अपने को नंगा पाया, हवा और आदम दोनों अदन वाटिका में हैं। उनकी आंखें खुल गई, तब वे जान गए कि गलत और सही क्या था, और तब उसने उपस्थान ढूंढने का यत्न किया, एक तरह से उसने अपने आप को ढांकने का। अब आज हम भी इसी तरह से करते हैं, एक बहाना कहते हैं, भाई मैं आपको बताता हूँ, यदि ये यहाँ था या यदि ये या यदि 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 वो, तो जरा देखिए, चाहे वो गलत हो या सही, परंतु आपको उसका सामना करना ही चाहिए, और यदि ये सही है तो हम उसके साथ रहें, यदि ये गलत है तो उससे अलग हट जाएं। बस क्या लें, क्या सही है ये ढूंढिए। आप अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, आइए हम मालूम करें कि सत्य क्या है और जो सही है उसके साथ रहिए। हम जानते हैं ये सत्य है। अब आज हम पाते हैं कि हमारे लोग कुछ ऐसे, ये ऐसा लगता है कि गिरजों से सारी हृदय की सच्चाई जाती रही। हम अपनी एक बहुमूल्य बहन के घर में रह रहे हैं जो इस कलीसिया में आई हैं। वो हो सकता है आज रात्रि में यहीं बैठी हों, और वो अपने लोगों को किराए पर देती हैं, और वो इस स्थान के प्रति हमारे लिए बहुत ही मधुर हैं कि हम स्थान को लें, और इसलिए हम उनका नाम लेना चाहते थे, परंतु हो सकता है कि मैं ऐसा करूं, वो नहीं चाहती, और वो हमारे प्रति इतनी मधुर हैं, ठीक है, वरना हम निश्चय ही उसको प्रकट नहीं करते, परंतु वो बहुत बहुत ही प्रिय महिला हैं। और वहाँ घर के कोने में एक टेलीविजन रखा था, हमें दो छोटे डुप्लेक्स मिले, मेरे पास बड़ा परिवार है और ढेर सारे नवयुवक, और हम और आप जानते हैं, और उन्हें पलंग चाहिए थे और बहुत सारे, और हर चीज ऊपर लगी थी, और आपको इसमें से उसमें निकल कर अंदर आना या बाहर जाना है, और वहाँ उनके पास टेलीविजन था, और उस टेलीविजन में ये बालक रविवार प्रातः एक तरह के मसीह गाने जो उस पर आ रहे थे देख रहे थे। और आप जानते हैं कि ये आपको लज्जित कर देता यदि कहीं पर विशुद्ध मसीहत नहीं थी जिस पर कि आप अपना हाथ रख सकते थे ये देखने के लिए कि मसीहत क्या कहलाती है। क्यों ऐसा लगता है कि सारी हृदय की सच्चाई इससे जा चुकी है? वे क्यों नहीं लगते? क्यों ऐसा है कि वे भयानक मुद्रा में वहाँ खड़े अपनी मुट्ठियाँ निकाल कर एक दूसरे से वहाँ पर लड़ते और मसीह गाने गाने की कोशिश करते और इस प्रकार की बहुत सी चीजें और ऐसे चुटकुले सुनाते जो कि शायद ही नाविक सुनाते हो और सब प्रकार की बातें कहते और छोटे बच्चे और करते जाओ। देखिए लगता है कि मसीहत की पवित्रता ही अपना स्थान खो चुकी है। अब मैं गिरजों में जाता हूँ और देखता हूँ कि पास्टर वहाँ खड़े होकर घोषणा करता है कि हमारा सामूहिक तैराकी कार्यक्रम होने जा रहा है। सारी स्त्रियाँ इन नहाने के वस्त्रों में वहाँ बाहर जा रही हैं। इन तैरने वाली स्त्रियों की वहाँ प्रतिस्पर्धा होगी और वो एक प्रकार की दावत करने जा रही हैं और बहुत सारे मुर्गे तले जाएंगे और बैंको खेला जाएगा और सब इस प्रकार की बातें। मेरे लिए इससे विशुद्ध हृदय की सच्चाई मसीहत से समाप्त हो चुकी है, चाहे किसी भी चीज से मतलब रखें। मैंने यहाँ आते हुए देखा, हम पाते हैं, आप जानते हैं कि हम यहाँ बहुत सारी बहनों को इस ठंडे देश में छोटे कपड़े पहने देखते हैं, जितने कि बाहर गर्म देशों में भी नहीं पहनते। देखिए, ये सत्य है, बाहर वहाँ जहाँ सही में गर्म है वहाँ बहुत सारे उनमें से ये नहीं पहनते, परंतु यहाँ जहाँ की ठंडा है वे ये करते हैं। देखिए, ये वो महसूस नहीं करते कि ये शैतान कर रहा है। देखा, अब यदि ये सुविधा के लिए था, यदि ये अपनी सहायता के लिए था तो ये भिन्न होता। मनुष्य होने के नाते मैं सोचता हूँ ये मनुष्य पर बीमारी सी लगती है, परंतु आप पुरुष पर कोई ध्यान नहीं देंगे, परंतु महिला उसकी देह पवित्र है और उसको उसे उसी प्रकार रखना चाहिए। और पुराने को देखें, आजकल आप लोगों को देख सकते हैं, दो आत्माएं हैं और उसमें से एक पवित्र आत्मा है और दूसरी वाली अपवित्र आत्मा है और एक उसके द्वारा शासित है और दोनों धार्मिक हैं। अब हाँ, ये अजीब बात है कि वो दोनों धार्मिक हैं और जिस तरह की एसाव और याकूब दोनों धार्मिक थे, जैसे केन और हाबिल दोनों धार्मिक थे, जैसे कि यहूदा और यीशु दोनों धर्म थे, दोनों धार्मिक थे, और आज हम देखते हैं दोनों पक्ष धार्मिक हैं। देखिए, ये एक ही आत्मा है, ये दोनों धार्मिक आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक पवित्र आत्मा अपने में रखता है, वो ऐसा जीवन जीता है जो कि उन्हें जीना चाहिए और भक्ति और ईमानदारी से चलता है। वो आपसे एक पैसा भी नहीं झाड़ेंगे और वे हर चीज ईमानदारी से करते हैं ताकि वो आपकी सहायता कर सकें। और दूसरे जो करेंगे जितना भी अच्छा जो वो कर सकते हैं, और दूसरों को हम इसका उल्टा पाते हैं, और तो भी दोनों धार्मिक आत्मा हैं, वे दोनों ही, एक पवित्र आत्मा और दूसरा अपवित्र आत्मा। और यदि आपने ध्यान दिया हो, यद्यपि वे अपने को धार्मिक होने का दावा करते हैं, वे आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको पवित्र लुढ़कने वाला कहते हैं। जो भी वो कर सकते हैं वे करते हैं, वे परमेश्वर के न बदलने वाले वचन की उपेक्षा करते हैं, जैसे कि मानो कि वो कभी लिखा ही नहीं गया। देखिए, आप कह सकते हैं, अब यहाँ देखिए, यदि बपतिस्मा, मेरे पास पवित्र आत्मा है और हाथ में सिगा लिए हुए पीते हुए खड़े हैं। जी हाँ, मेरे पास पवित्र आत्मा है। मैं नहीं सोचता कि थोड़ी सी पी लेने में कोई गलती है, मैं ये नहीं सोचता, समझे? और आपने ध्यान दिया, मैं नहीं सोचता, परंतु परमेश्वर भिन्न सोचता है। आप उसके वचन के अनुसार देखिए, समझे? देखिए, वे साधारणतः वैसे ही हैं जैसे उस पर थूकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, जिस प्रकार की ये छोटा अपंग व्यक्ति जो कि उस समय निकल कर आया जब दाऊद अपने सिंहासन से निकाला गया, वो जैतून पहाड़ पर चढ़ रहा था, रोता हुआ ऊपर गया और मुड़कर पीछे देख रहा था, और ये बेकार छोटा व्यक्ति वहाँ खिचड़ता हुआ निकला और उस पर थूक रहा था, और उस अंगरक्षक ने कहा, मैं जो छोड़ दूं कि उस कुत्ते का सिर उस पर रहने दूं और वो मेरे राजा पर थूके? दाऊद ने कहा, उसे जाने दो। देखिए, वे उस पर थूकते हैं। लगभग 800 वर्ष बाद उन्होंने उसके पुत्र यीशु मसीह पर भी थूका, और आज वे उस पर फिर से थूकते हैं, जैसे कि यदि वो अब भी नहीं, केवल अनादरपूर्ण, कोई मतलब नहीं, बस अपना मुख फेर लेते हैं और उसे दूर चले जाते हैं और आपके सामने हंसते हैं। ये क्यों है? वो तर्शीश के जहाज पर हैं, ये सत्य है। ये परमेश्वर की बुलाहट है कि आपको उनकी बुराइयों के विरोध में चिल्लाना है, पाप के विरोध में चिल्लाना है, जो बातें गलत हैं उनके विरोध में चिल्लाना है। अब याद रखें, यही होगा। हाँ, आप जानते हैं ये समय, आप जानते हैं मैं 2 घंटे फर्क हूँ, मैं टूसान में इस समय 7:10 हुए हैं, और मैं एक प्रकार से, एक तरह से अब यहाँ अपने स्थान से अलग हूँ, ठीक है? अब याद रखिए कि हमें इसके लिए उत्तर देना है। याद रखें, जब मसीह पर थूकते हैं इसके लिए उत्तर देना है। जब दाऊद अपने निर्वासन से वापस आया, जब वो भगोड़ा था और जब वो वापस आया, याद करिए, ये व्यक्ति मुंह के बल गिरा और दया के लिए रोया। बाहर जाते समय उसने दाऊद पर थूका, परंतु जब वो वापस आया तो वो लगभग अपने आंसुओं से उसके पैर धोने के लिए तैयार था। और एक वो जिन्होंने उसे छेदा है उस पर दृष्टि करेंगे, और जो आज उसको छेद रहे हैं वो भी उसे देखेंगे। उनके लिए ये किसी दिन वापस आएगा। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य 22, वो अपने हर वचन का पालन चाहता है जो उसने लिखा है, प्रत्येक वचन। अब हम जानते हैं कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, ये प्रमाणित है, हमारे पास है। इस आने वाले सप्ताह में हम विश्वास करते हैं कि वो निरंतर अपने को हमारे बीच में प्रमाणित करेगा। बीमार चंगे होंगे और महान बातें घटित होंगी। हमारा ख्याति का विचार नहीं है, हम सत्य चाहते हैं। और हम नहीं चाहते हम किसी चीज का सामना करना नहीं चाहते सिवाय जो परमेश्वर ने कहा है सत्य है। परंतु निसंदेह आपके पाप आपको ढूंढ लेंगे। यदि ये यहाँ नहीं होता तो ये न्याय में आपको पकड़ा देगा। इसलिए आप अब ये कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेगा। जी हाँ श्रीमान। परंतु यदि आप सच्चे मसीही हैं, योना की तरह सच में बुलाए गए थे, तो परमेश्वर ने आपका भाड़ा पहले ही चुका दिया है। उस तर्शीश जाने वाले जहाज पर से कैसे भी उतर ही आइए। परमेश्वर ने आपको इस जीवन के लिए पहले से ही ठहराया है। जी हाँ श्रीमान। यदि आप सच्चे हैं, परमेश्वर के बालक कहलाते हैं, तो मसीह में आ जाएं, उसकी परिपूर्णता में आ जाएं। आपका किराया कहाँ के लिए चुकाया गया है? ये निनवे के लिए दिया गया है, न कि तर्शीश के लिए। आप पहले से चुने जा चुके हैं। आपका जहाज अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार है। इसलिए अब केवल एक ही काम करने के लिए है कि उस पर सवार हो जाएं। और यदि आप परमेश्वर की तरह थे, आपको तब तक कभी शांति नहीं मिलेगी। उस समय पहले मेरे छोटे भतीजी की तरह, अब से लगभग 10 वर्ष पहले वो इधर से उधर भटकता रहा। किसी प्रातः वो किसी गिरजे में जाता, वो कैथोलिक गिरजा यही है, और वो ले लेता क्योंकि किसी पवित्र फादर के विषय में जो वहाँ था बातें करता, और किसी के विषय में जो यहाँ है, और किसी के विषय में जो वहाँ है, इस सबसे क्या बात बनती है? देखा, और वो अभी भूखा और प्यासा है। मैंने कहा, पुत्र तुम्हारा स्थान वहाँ ऑल्टर पे है, समझे? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जब कभी भी परमेश्वर आपको निकाले, आप केवल समर्पित हो जाएं और आगे बढ़ें। बस परमेश्वर को याद रखें, ठीक है? परमेश्वर नाव में था, परमेश्वर तूफान में था, परमेश्वर मछली में था। जहाँ कहीं भी वो घूमा, परमेश्वर वहाँ था। देखिए, परमेश्वर वहाँ है और वो निरंतर आपको खोजता रहता है। तो फिर हम क्यों देर तक प्रतीक्षा करते हैं? हम अभी इस बेदारी को आरम्भ करें, ये ठीक बात है। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत पास है और वो दुल्हन को लेने आ रहा है और वो तैयार है। और हम किसी भी तार्शिश के लिए कोई जहाज नहीं चाहते। हम निनवे जा रहे हैं, हम महिमा में जा रहे हैं। आमीन, ये ठीक बात है। हम वही जा रहे हैं जहां परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, और वही हम करना चाहते हैं। अपने हृदय के साथ परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएं, ना कि बहुत सारे अपने हाथों से, परंतु परमेश्वर के सामने अपने हृदयों के साथ, जब तक कि वो हमें बार बार अपनी महिमा की किरणों से पका ना दे और हम में अपनी भक्ति को सेक कर और जो हम में है उसे पका ना दे, जब तक कि हम दूसरों को ये ना दिखा सकें कि यीशु मसीह जीवता है। ओ, हम इसका विश्वास करना चाहते हैं। और याद रखें, जहाँ भी योना गया, परमेश्वर नाव में था, परमेश्वर तूफान में था, परमेश्वर मछली में था, और वो योना के साथ रहा जब तक उसकी सिद्ध इच्छा पूरी ना हुई। ये ठीक बात है। और यदि आप उसको यहाँ चकमा दे, वहाँ चकमा दे, और वो आपके पीछे हो, आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक आप वापस आकर उसके काम को जो आपने पहले आरंभ किया ना करें। देखा, मत जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति से मत भागिए, उसकी ओर मुख कीजिए। आप विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, तो फिर यदि ये सत्य है तो ये जीने मरने के या किसी के भी योग्य है। और यदि आपको ये कभी भी प्रमाणित हुआ हो कि ये सत्य है, तो हम इससे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकते। वो वैसे ही वही होगा, आप ये नहीं कर सकते। अपने दिए गए भविष्यवक्ता के द्वारा, जिसको उसने वहाँ जाने के लिए अभिषिक्त किया और संदेश को प्रचारित करे, अब ऐसा लगता है कि वो अपना दूसरा भविष्यवक्ता भेज सकता है, परंतु उसने योना को अभिषिक्त किया है। और यहाँ तक कि एलिया भी नहीं कर सकता, यर्मया भी नहीं कर सकता, मूसा भी नहीं कर सकता। ये तो योना को ही निनवे जाना है, बस ये वहाँ था। उसने उसे अधिकार दिया और उसे जाने को कहा, और जब वो कहता है योना वहाँ निनवे को जा, तो योना को छोड़ कोई और जाकर इसे नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है, तो ये आप ही को करना है, किसी और को नहीं। देखिए, हमारे लिए अच्छा है कि उसका सामना करें और जाकर करें। हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि परमेश्वर कुछ कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि अब हम उनके बीच में रह रहे हैं। आज रात्रि मैं विश्वास करता हूं कि मैं उस सभा में प्रचार कर रहा हूं जो कि वहां पर रुकी हुई परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं इसका सही में पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। मैं ये कहूंगा, ये अब भी वैसा ही है जैसा कि हमेशा से रहा है। अब हम विश्वास करते हैं कि यूहन्ना 14:12 पूरा होने का समय आ गया है। हम विश्वास करते हैं कि मलाकी 4 पूरा होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि लूका 17:30 पूरा होना चाहिए। इन सारी भविष्यवाणियों को जो उसने कही, हम विश्वास करते हैं कि इस दिन में घटित होंगी। हम विश्वास करते हैं कि ये पूरी होनी चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि अब हम इन्हें पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। भागना बंद करो, उसकी उपस्थिति में से मत भागो, उसकी उपस्थिति में आ जाओ। यही ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आपकी यही करने की इच्छा है, क्योंकि मैंने टेक्सास के, लुइसियाना के और हर तरफ के लाइसेंस देखे हैं। इसलिए हम यहाँ उसकी उपस्थिति से भागने के लिए नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति में भागने के लिए यहाँ हैं। वापस आ जाओ, उतर जाओ योना की तरह से। यदि आप भी भटक रहे हैं किसी मार्ग की तरफ, जाऊँ क्या करूँ, तो आज रात्रि हमारे साथ इस जहाज में आ जाओ। हम चिल्लाने के लिए तार्शिस जा रहे हैं, यानी निनवे चिल्लाने के लिए। यदि वे चाहते हैं तो हम उन्हें तार्शिस के जहाज में जाने दें। परमेश्वर के समक्ष हमारा कर्तव्य है ये संदेश जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसलिए इस आने वाले सप्ताह के लिए आज रात ये एक आपके जानने के लिए प्रस्तावना है। जब मैं पुकारता हूँ तो इस संदेश के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। भाइयों, आप सेवकगण जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। और आप स्त्री और पुरुष जो इस विवाह और तलाक के विवाद को लेकर आए हैं, आज रात्रि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उसको समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ कहा है कि मैं केवल परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ। और तब मैं फिर आपके लिए उत्तरदायी हूँ कि मैंने आपको सत्य बताया, और मैं आपको सत्य को छोड़ और कुछ नहीं बताऊंगा जब तक परमेश्वर मुझे बताता रहेगा कि ये सत्य क्या है। जब तक मैं सत्य को नहीं जान जाता, तब तक मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, परंतु मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे विवाह और तलाक पर सत्य दिखाता है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मुझे इसे बाहर लाने देगा। और दूसरे संदेश जिनको मैंने इस सप्ताह में लक्ष्य पर रखा है, वो ये मिल्किसेदक कौन है, परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए कहां चुना है, और इस प्रकार की थोड़ी चीजें, और कौन से संदेश आ रहे हैं, प्रसव पीड़ाएं और कुछ चीजें जो कि क्रम और प्रशंसनीय है एक मनुष्य के लिए उसकी पत्नी का चुनाव। उन संदेशों में कुछ चीजें मैं इस सप्ताह में लाना चाहता हूँ, परंतु मैं केवल ये चाहता हूँ कि सभा, यदि यहाँ पर कोई सेवक गण है तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप या कोई सदस्य गण अपने गिरजे में वापस जाकर और कहे कि भाई ब्रैनम ने इस प्रकार और इस प्रकार कहा है। मैं उन संदेशों को लाने के लिए बाध्य हूँ जो मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। जैसे कि आज रात्रि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और परमेश्वर जानता है कि ये सत्य है। बिल्कुल यहाँ इस नदी पर, हो सकता है यहाँ लोग बैठे हैं जब 1933 में प्रभु का सरदूत वहाँ नीचे आया और उसने मुझे बताया कि उसने यहाँ स्प्रिंग गली में क्या किया। यदि आप यहाँ परदेसी हैं, तो वो स्प्रिंग गली का कोना है, वहाँ गाड़ी चलाकर जाएं और वहाँ आप नदी पाएंगे। ये वहीं घटित हुआ था, वो 1933 में हुआ। तब से लगभग अब 32 वर्ष हो चुके हैं। ओ, ये 30 हुए, 32 वर्ष पहले। और किस तरह से वो सारी बातें वहाँ लाया, और हम बाहर निकल गए, संदेश लाते रहे, और बीमारों, अंधों और अपंगों और लंगड़े और पड़े हुओं और हर चीज को चंगे होते हुए देखा। और तब यहाँ तक कि मृतकों को, जिनको हम जानते हैं कि उनको प्रमाणित किया जा चुका था, मृतकों में भी जी उठे, लोग मर गए और फिर से जीवित हो गए। और ये सारी चीजें, यदि एक संदेश आगे बढ़ता है तो वहाँ चिन्ह और आश्चर्यकर्म होते हैं। और आप अब भी उन्हीं पुराने विद्यालयों के विचारों को देखते हैं जिनके साथ आप आए हैं, वे परमेश्वर की ओर से नहीं आए हैं। परमेश्वर को केवल ये नहीं करना, परमेश्वर आपके ध्यान को किसी चीज पर आकर्षित करने का यत्न कर रहा है। और जब यीशु बाहर निकला तो उसने बीमारों को चंगा करना आरंभ किया और महान कार्य किए और चीजें की। वो सदैव, वो यीशु ने ये किया और मूसा और यीशु ने ये किया और बाकी सब ने, और जब वो यहाँ था तो उसने किया, और वो आज भी वही कर रहा है। जब वो बेदारी जैसी सभाओं के लिए भेजता है और पृथ्वी पर सभा आरंभ करता है, और वो बड़े बड़े चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ चलता है, और तब आप देखते हैं कि वही पुरानी विद्यालयों की शिक्षा वापस आ जाती है, तो वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है, वहाँ कोई नई चीज आ रही है। जब उसके बाद यीशु आया, जब वो एक अच्छा गुरु है, जब वो बीमारों को चंगा कर रहा था, तब वो किसी भी प्रचार मंच से प्रचार कर सकता था। वो तब उन्होंने उसको वहाँ पसंद किया, परंतु एक दिन जब उसने बैठकर ये कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं, भाइयों, इसके बाद वो इतना लोकप्रिय ना रहा था। जब उसने कहा, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं, परंतु वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसको अंतिम दिन जिला उठा खड़ा करूंगा। तब उसके पश्चात वो अधिक लोकप्रिय न था, और उन्होंने कहा, यह मनुष्य लहू पीने वाला प्रेत है, यह मनुष्य बालजबूल है। इस प्रकार से उसने उन बातों को किया, वो भाग्यों को बता सकता था, उसने उनके मस्तिष्कों के भीतर देखा और उनके विचार मालूम किए, वो भविष्य बताने वाला है। परंतु वो क्या था? वो परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन उस समय के लिए था, वो कर्तव्य से बंधा हुआ था। उसने कहा, मैं सदा वही करता हूँ जिससे मेरे पिता को प्रसन्नता होती है। परमेश्वर हमारी सहायता उन्हीं चीजों को करने के लिए करे, वही करे जो पिता को प्रसन्न करती हैं। अब मैं आशा करता हूं कि सब समझ जाएंगे। यदि आप मेरे साथ इन संदेशों और बातों में सहमत नहीं हैं जो कि आप याद रखेंगे, तो कम से कम इतना सम्मान रखिए कि मेरे पास एक जिम्मेदारी है, और मैं तार्शीश को नहीं जा रहा हूं, मैं निनवे को जा रहा हूं, और मुझे चिल्लाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। लगभग 9:30 बजे हैं। मैं आपको रोकना नहीं चाहता, परंतु आज रात्रि मैं हो सके तो मालूम करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उसको जहाँ मसीह में होना चाहिए नहीं है, परंतु आप होना चाहते हैं और आपकी होने की इच्छा है, तो क्या आप हाथ उठाकर कहेंगे, भाई ब्रणम मेरे लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर आपको आशीष दे। जरा इन हाथों को देखें। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ हूँ भाई ब्रणम परमेश्वर के समीप आने के लिए, और यदि आपका सिर उठा हुआ है तो मेरा हाथ भी उठा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपकी तरह भूखा हूँ। परंतु उस दिन बढ़िया बातों में से एक बात घटित हुई, और मैं जानता हूँ कि अब क्या करना है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको सीधी साफ समझ दे। वो है, यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो कहीं उसका उत्तर भी है, प्रश्न के पीछे उत्तर भी है। मेरी प्रार्थना है इस चलते समय परमेश्वर आपको प्रश्न का उत्तर दिखाए। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करे। मैं समझता हूं कि हम चंगाई की सभाएं करने जा रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर हम प्रत्येक रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी सहायता हो सके, और आप ऐसा कार्य करें जिससे हमें सहायता मिले, और हम मिलकर कार्य करें। परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो हमें महान सभा देगा। अब पिता परमेश्वर, ये थोड़े टूटे फूटे शब्द, परंतु अब ये आपके हाथों में है। प्रभु वे कहे जा चुके हैं, मैं ही इसे करूंगा। जिस प्रकार ये वचन कभी मर नहीं सकते, ये टेप में संसार के चारों ओर घूमेगा और कोई फिर से इसका सामना करेगा। प्रभु मैं ये अनुभव करता हूँ, और मैं ये हृदय की सच्ची गहराई से कहता हूँ, प्रिय परमेश्वर, मैं आज रात्रि इनमें से हर एक आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इससे पहले ये सप्ताह पूरा हो, वो इस महान प्रश्न को जो आज रात्रि उनके मस्तिष्क में है समझ जाएंगे और तय हो जाएगा। प्रभु इसे स्वीकार करें। पिता, अभी यहाँ पर बहुत से हैं जो आपको बचाने वाले के रूप में नहीं जानते, या हो सकता है वे कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। होने दे कि आज रात, प्रभु, मैं किसी को पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता, न ही मैं किसी को बचा सकता हूँ। मैं केवल उनको वही बता सकता हूँ जो आपने कहा है, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके हृदयों में भूख जगा देंगे। प्रभु, बहुत से हैं जिन्हें भूखा होना है, वे बर्फ और हर सब में और वर्षा वाले पहाड़ों पर और रेगिस्तान के पार किसी प्रकार सैकड़ों मील गाड़ी चलाते हुए इस छोटे से पुराने स्थान में आकर यहाँ कोने में बैठे हैं। तब मैं फिर सोचता हूँ, आपने कहा जहाँ लोत है वहाँ उकाब जमा होंगे। प्रभु, हमें अपना दिव्य मन्ना खिला, हमारे प्राणों को वही दे जिसकी हमें सच में आवश्यकता है। पिता, हम आपके लिए प्यासे हैं, अब हम आपके हाथों में हैं, और अब वो पवित्र आत्मा आए जो कि उस दिन वहाँ पहाड़ पर आया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रत्येक के हृदय को अपनी भलाई और अनुग्रह और समझ से तृप्त कर देगा। पिता, हम अनुभव करते हैं, इसे समझना ही हमारी आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम ये नहीं जानते कि हमें क्या कर रहे हैं तो हम कैसे जाने कि क्या करना है। परंतु हमारे पास समझ होनी चाहिए, जैसे कि दानियल ने कहा, उसे भविष्यद्वक्ता के लेख से समझ में आया। और पिता, हमें पवित्र आत्मा के लेख से समझ मिली, जैसे कि वो इस घड़ी में हम पर प्रकट कर रहा है। आपके लिए जो इच्छा हमारे हृदय में है प्रभु, वो हमें दे। पिता, हम कोमलता से आपकी महिमा के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, जैसे कि हमारी बहन वो स्वर दे रही हैं, वो मुझे अनुग्रह और महिमा देगा और मेरे सारे मार्गों में मेरे साथ चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अब शांति के साथ प्रार्थना करें और स्वर्गीय पिता से मांगें कि वो आज रात्रि आपके लिए वही प्रदान करे जिसकी आपको आवश्यकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, वो आपके इतना ही पास है जैसी आपकी बाहां आपके पास। आपने मेरा दूसरी चीजों में विश्वास किया है, इसमें भी मेरा विश्वास करें। जो कोई भी आपकी आवश्यकता है वो यहाँ से उसे देने के लिए है। ओ, पिछले कुछ सप्ताहों से मैं आपको देखने के लिए इतना भूखा, इतना प्यासा, इतना ग्रहार्थ था। इस कारण मैंने कहा, बिली चलो घर चलें। मैडम ने कहा, बिल तुम वहाँ ठंडे प्रदेश में फिर से वापस जाकर क्या चाहते हो? तुम्हारा गला हमेशा खराब रहता है और वगैरह वगैरह। हमेशा तुम जब वहाँ आते हो और जुकाम से जकड़ा सिर और गला खराब और तुम बोल भी नहीं पाते हो। मैंने कहा, भाई मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे कहा, मैं अपने मित्र चार्ली कॉक्स को पीछे बैठा देखता हूँ। मैंने कहा, चार्ली को उतावली से ये कहते सुनना चाहता हूँ, वो छोटी गिलहरी वहाँ उस पेड़ पर चढ़ गई। मैं तो ये सुनने के लिए बहुत ही लालयित हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम्हारे चारों ओर रहूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई काफी बीमार है और बहुत समय नहीं हुआ मैंने उसका दर्शन देखा है और वो अपनी पीठ के बल पड़ा है। मैं जानता हूँ कि अभी हाल ही में वो हमसे अलग होने के बहुत नजदीक था। जब मैं आप में से बहुत सो को देखता हूँ, एक रात में मसीह व्यवसायों की सभा और अंतर्राष्ट्रीय सभा में आया। बूढ़े बाबा शेकेरियन देमस के पिता जो वहाँ बैठा करते थे, जब तक मैं ना आ जाऊँ ताकते रहते थे। तब वो मुस्कुराते हुए हल्के से मेरी ओर हाथ हिलाते। वो वहाँ नहीं थे, वो जा चुके हैं। तब मुझे उस परिवार में यहोवा यूँ कहता है के साथ जाना पड़ा कि उनकी पुत्री फ्लोरेंस भी मरने वाली है। मैंने उसे दर्शन में जाते हुए देखा और मैं जानता हूँ कि वो जा रही है। और मैंने कहा, प्रार्थना करो, केवल प्रार्थना करो। आप जानते हैं, एक बार एक भविष्यद्वक्ता था जिससे कहा गया कि राजा को जाकर बता दे कि अपना घराना व्यवस्थित कर ले, और उसने प्रार्थना की और अपने जीवन को 15 वर्षों के लिए बचा लिया। मैंने कहा, प्रार्थना करो, परंतु देखें। और मैं वापस आ गया और उस दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठा खा रहा था। एक व्यक्ति मेरी ओर आया और बोला, क्या तुम बिली ब्रैनम हो? मैंने कहा, हाँ। वो शायद मुझे नहीं जानता था, कारण ये मेरे सिर का गंजा वाला भाग, मैं सभा की अवधि में ठंड से बचने के लिए ये बाल पहने हुए था। और वो मेरी ओर आया, उसने कहा, मैंने सोचा मैं तुम्हें जानता हूँ बिली। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम कौन हो? बोला, मैं जॉन वॉरमैन हूँ। मैंने कहा, जिप कैसा है? वो बोला, बिली वो मर गया। ओ, मैं न्यायालय से आ रहा था, अपने टैक्स चुकाने गया था। न्यायालय से निकलते हुए और महिला मेरी ओर चिल्लाई और बोली, तुम्हें मालूम है जॉन चला गया, या कोई और नाम? वो जॉन नहीं हो सकता, एड या कुछ और। और मैंने कहा, मैं उस महिला को नहीं जानता। मुझे परेशानी महसूस हुई और मैं पता करने आया वो महिला कौन थी, मैं नहीं जानता। वो बोली, आपको याद है एक अंधेरी रात जब यहाँ नदी किनारे तक चढ़कर बह रही थी और वहाँ चेस्टनट गली के मकान बह गए थे और आप अपनी जान जोखिम में डालकर उस स्थान पर उस स्त्री और बच्चे को लाने के लिए गए थे? मैंने कहा, क्या वो आप हैं? वो बोली, मैं वही महिला हूँ। वो अपने बच्चे के लिए रोने लगी, आप मेरी कहानी जानते हैं। उसने कहा, वो जिसको मैं अपना बच्चा कह रही हूँ विवाहित है और उसका परिवार है, देखिए। और अब वो बूढ़ी है और सफेद है और यहाँ मैं भी। एक एक करके हमारे कार्ड पैटर्न में से निकलते जाते हैं, जैसे कि ये था। और हमारी सभाएं होती हैं और मैं इसकी कमी अनुभव करता हूँ, उसकी कमी अनुभव करता हूँ। इन्हीं दिनों में किसी दिन हम सबको गायब होना है, परंतु भाई बहन वहाँ एक एकत्र होने का स्थान है। आइए अब हम निश्चित हो जाएं कि हम सही हैं या आप होंगे। परमेश्वर के प्रति अपनी समझ और जो भी है बर्बाद ना जाने दें, हम विश्वास करें। पिता, ये आपके हाथों में है, मैं आपके हाथों में हूँ प्रभु। उन सभाओं के लिए जो आने वाली रात्रि में आरंभ होने वाली हैं, अब हम यहाँ केवल समर्पण के लिए हैं।
क्या आप हमारी सहायता करेंगे प्रभु?
होने दे हमारी बातचीत निरंतर आपके लिए हो।
होने दे हमारा हृदय और मस्तिष्क आप पर स्थिर रहे, और आपने कहा कि आप हमें अपनी सिद्ध शांति में रखेंगे।
बाइबल में ये भी लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना।
ओ परमेश्वर, हम अपनी समझ नहीं चाहते, हम आपकी समझ चाहते हैं।
ओ परमेश्वर, आप उसे हमें दें,
और होने दें कि ये बेदारी हमारे प्राणों में आए, जब तक इन लोगों का झुंड एक हृदय और एक सहमति में ना आ जाए। पिता, इसे स्वीकार करें,
इन चीजों को प्रदान करें, जबकि हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करते हैं।
परमेश्वर, यदि आप में से कोई ये महसूस करता है कि वेदी के पास आकर घुटने टेके, यदि आप आना चाहते हैं तो कहिए मुझे जहाँ होना चाहिए। मैं नहीं हूँ प्रभु, मैं पवित्र कार्य के लिए फिर से अलग होना चाहता हूँ। प्रभु, आज रात्रि में ये करना चाहता हूँ। यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है, यहाँ हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे।
In the cross, in the cross, oh be my glory.
आइए अब हम में से प्रत्येक अपनी तरह से प्रार्थना करें, बस समय को भूल जाएं। आइए उसकी उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाएं। यहाँ ये छोटी स्त्री पुकार रही है, यीशु मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपको याद है जब आप बची थीं बहुत वर्षों पहले, याद कीजिए वो आपके लिए वो कितना प्यारा था, वो आज रात्रि भी उतना ही प्यारा है। आइए हम सब अपनी तरह से प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर के लिए पवित्र करने के लिए अपने आप को अलग करें, अपने को प्रभु के लिए समर्पित करें। प्रिय प्रभु यीशु, मेरे सब आरामों की धारा मुझे जीवन से अधिक कीमती है। पृथ्वी पर तुझे छोड़ कौन मेरा है, या स्वर्ग में तुझे छोड़ कौन है। प्रिय परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह और दया हरेक पर और हम में से हरेक पर हो। प्रभु, हम यहाँ वेदी के पास हैं, बहुत से नहीं आ सकते, आप उनसे उनके स्थानों पर मिलें। जो भी हम चाहते हैं प्रभु, आप उसे लेने के इच्छुक हैं। यदि हम केवल अपना समय दें, आप ग्रहण करें, प्रतिभा आप उसे ग्रहण करें। परंतु प्रभु परमेश्वर, आज रात्रि हम उससे भी आगे जा रहे हैं कि हम अपने को ही देने जा रहे हैं। वो सब मैं जो हूँ, वो सब मैं जो आगे आशा करता हूँ, प्रभु आप सब में हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ये प्रार्थनाएं अपने हृदय में ले लेंगे प्रभु, और हमें पवित्र आत्मा की गहराई देंगे कि हमारे जीवन बदल जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं हम अंत में हैं, अधिक समय नहीं बीत सकता। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे प्रिय दिन प्रतिदिन छूटते जा रहे हैं, नवयुवक और बूढ़े, हम जानते हैं जल्द ही ये हमारे द्वार पर खटखटाएगी। और आज रात्रि प्रभु, जब हम यहाँ पर अपनी सही मानसिक दशा में बैठे हैं, या यहाँ घुटने टेके हैं, खड़े हैं, हम जिस भी स्थिति में हैं, प्रभु परमेश्वर हमें ग्रहण करें। मुझे ले प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु मैं जो भी हूँ प्रभु, यदि आप मेरा कोई भी प्रयोग कर सकें, मैं अपने को आपको समर्पित करता हूँ। प्रिय परमेश्वर, मैं इनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन प्रिय लोगों के लिए मैं वहाँ एरिजोना के पहाड़ पर खड़े होकर और मैं इनके लिए रोया, और यहाँ ये अल्टर के चारों ओर हमारे साथ घुटने टेके आज रात्रि प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवनों को पवित्र कर। प्रभु, हम आपको अपने जीवनों से अधिक प्रेम करते हैं, हम आपको अपने परिवारों से अधिक प्रेम करते हैं, हम आपको पत्नी बच्चों पिता माता बहन भाई पति पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे हृदय में इसे प्रत्यक्ष कर दें। प्रभु, हमारे प्राणों में प्रसन्नता का तेल इस सप्ताह में उंडेल दें। प्रभु, हमें वचन द्वारा नहाएं और धोएं, वचन के पानी के द्वारा सत्य को हमें बांट दें। आज रात्रि यहाँ बहुत से हैं प्रभु, और यहाँ पर होंगे जो कि जीवन संबंधी विषयों पर भ्रमित होंगे। ओ परमेश्वर, झरने को परमेश्वर के भवन में खोल दे, जो हमारी सफाई के लिए है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लहू में हमें धोएंगे, साफ करेंगे, और हमें नई सृष्टि बना देंगे, और हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दें कि जीवित यीशु मसीह का सत्य का वचन उसके दिव्य प्रकाशन में सामने ला सकें। प्रभु, होने दे कि वो हमारे बीच में प्रकट हो, होने दे कि वो आए और हमारी बीमारियों को चंगा करे, हमारे पापों को क्षमा करे, हमारे भूखे हृदयों को महान प्रसन्नता की लहरों से भर दें, सुसमाचार हमारे जीवनों में प्रकट हो। हर पास्टर, हर गीत निर्देशक, हर संडे स्कूल शिक्षक को आशीषित करें, हम सबको एक साथ आशीष दें, क्योंकि हम सच में आपसे प्रेम करते हैं। इस समर्पण में हम आपके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यूज अस नाउ अकॉर्डिंग टू थाय ओन। यीशु मसीह के नाम में हमें अपनी इच्छा के अनुसार काम में ला। माय फेथ लुक्स अप टू थी away. Oh. आपको ये अच्छा लगता है? आइए हम इसे फिर से गाएं।
Life's dark maze I trip and grief around me spread. Oh, be thou my guide. This darkness turned to day. Oh, why?
क्या इससे आपको अच्छा अनुभव होता है? आप में से कितने पुराने गाने पसंद करते हैं? मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्या आप? Join in the song with sweet accord and the surround the throne and the surround. अब जब हम गाते हैं तो खड़े हो जाएं और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। बहन को आशीष मिले, बहन को आशीष मिले, भाई को आशीष मिले, बहन को आशीष मिले। वो परमेश्वर का सुंदर नगर। आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। क्या यह आपको बढ़िया अनुभव नहीं कराता? ओ, आइए हम अपने हाथों को उठाएं, केवल उसकी प्रशंसा अपने तरीके से करें। प्रभु यीशु, तू शहरों का गुलाब है, घाटी की कुमुदनी, भोर का चमकता तारा। मेरे प्राणों के लिए तू 10,000 में सुंदर है। तू मेरे सारे विश्रामों की धारा है, मेरे लिए जीवन से भी अधिक। कितना हम तुझसे प्रेम करते हैं, अब हमारी सुन प्रभु। कैसे हम तेरा धन्यवाद करें, ओ कैसी तेरी प्रशंसा करें। इन्हें आशीषित कर, हमारे मूल्यवान और बचाने वाले। इन बातों को स्वीकार करें प्रभु, इसे स्वीकार करें। जो भी हो जैसे भी मुझे लगता है हम जा रहे हैं, कुछ हमारे लिए सामने रखा है। अब केवल याद रखें, मैं विश्वास करता हूं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। महान आनंद सामने है, इसका विश्वास करें, ये ठीक बात है। बहुत से दुखित हृदय जुड़ जाएंगे, महान भेद साफ हो जाएंगे और लोग जो दुखित हैं आनंदित हो जाएंगे। जैसे कि बूढ़ा यूहन्ना, जब वो प्रचार करने के लिए बहुत ही बूढ़ा हो गया तो वो बैठ जाता और चिल्लाता। वे मुझे बताते हैं कि वो अपनी पूरी सामर्थ से छोटे बालकों को एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, कुछ भी अपने बीच में ना आने दो, समझे, हर चीज को दूर रखो। हाँ, कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, उसका सामना करो। हम निनवे की राह पर हैं, समझे, उस तर्शिश के जहाज पर ना चढ़ें, वो आपको संगति से दूर ले जाता है। आइए हम परमेश्वर के आशीषों के झरने के पास चलें। मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसे पाने जा रहे हैं, हमारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ। बहन, आपको पहले से अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। मैं इसी प्रकार से बालकों को उत्पन्न होते देखना चाहता हूँ जो कि आ रहे हैं। मैं वर्षों पहले के लिए सोच सकता हूँ कि इन्हीं स्थानों पर कितने हजारों परमेश्वर के राज्य के लिए उत्पन्न हुए थे। बिल्कुल इसी स्थान पर हमने कितना थोड़ा जाना, जब हम यहाँ पर जेब में 80 सेंट लेकर खड़े गिरजा बनाने के लिए खड़े हुए थे। उसने कहा, मुझ प्रभु ने इसे लगाया है, मैं इसे रात और दिन सींचूंगा, और उसने यही किया और उसने यही किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जब हम अपने सर झुकाए हुए हैं, अब कल रात याद रखें, सभाएं वहाँ विद्यालय के सभागृह में होंगी, और यदि हमने किसी को यहाँ स्थानांतरित किया है कि लोगों को बताए कि वो वहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, आप उससे प्रेम करते हैं तो आमीन कहें। वो कितना शानदार है ना। मैं यहाँ किनारे पर खड़ा और वो पुराना गाना गा रहा था, यर्दन के तूफानी किनारे पर मैं खड़ा हूँ। सोचिए, ये 30 वर्ष पहले था, 33 वर्ष पहले, और चाहने वाली दृष्टि डाली उस कनान की सुंदरता और खुशनुमा देश जहाँ मेरी धरोहर रखी है, और जितनों को मैंने उस संध्या में बपतिस्मा दिया, अब वे वहाँ हैं। जब वे वहाँ खड़े और उस भोर के तारे को जो स्वर्गों से उतरता आ रहा था, चारों ओर चक्कर काटता हुआ इस तरह से नीचे आ रहा था, बोला, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लाने के लिए मसीह को पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया, तेरा संदेश दूसरे आगमन के आगे चलेगा। ये कैसे सोचा जा सकता है, परंतु परमेश्वर के सारे वचन सत्य हैं, परमेश्वर के सारे वचन। हम महान राजा की उपस्थिति में रह रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाए हैं, तो मैं भाई नेविल से, हमारे बहुमूल्य पास्टर से कहने जा रहा हूँ कि यहाँ आकर प्रार्थना से हमें विसर्जित करें। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे।